हरे कृष्ण। क्षमा करिए थोड़ा देर हुआ क्योंकि आज यज्ञ भी कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो पिछली बार हम लोग ब्राह्मण के 9 लक्षण जो हैं उसकी चर्चा कर रहे थे और पिछली बार जहाँ पे हमने समाप्त किया था वो 5वां लक्षण था, शांति। शांति और अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला है आर्जवम का मतलब क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को क्या कहते हैं हिंदी में? सत्य। आर्जवम का मतलब है, अर्थ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को सरलता भी कह सकते हैं। सरलता, निष्कपट होना। ये यथामाम प्रबद्यन्ते ताम सदैव भजामि। तो जिस तरह से हम भगवान के पास जाएंगे, जिस भावना से, उसी भावना से भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। सरलता का मतलब है कपट की भावना ना होना। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि कपड़े सरल होना। सरलता का अर्थ है कि हृदय से सरल होना। और प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह पर, द ब्राह्मण द ड्यूटी इज हाउ टू प्रैक्टिस टू कंट्रोल द माइंड, टू कंट्रोल द सेंसेस, शमो दमस तितिक्षा, टू बी टॉलरेंट, टू बी वेरी सिंपल, सिंपल लिविंग, नॉट वेरी गॉर्जियस लिविंग, वॉटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, अ ब्राह्मण विल एक्सेप्ट नॉट मोर देन दैट, दैट इज सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सरल जीवन, ऊंचा विचार, ब्राह्मण का ही लक्षण। वैश्य जो होता है वो संग्रह करता है, संग्रह करता है, लेकिन ब्राह्मण जो है वो क्या करता है? दान करता है। वो कुछ सीखता है तो दूसरों को भी सिखाता है, सरलता का जीवन बिताता है, संग्रह नहीं करता। अत्याहार अगर हम करते हैं, अति आहार जिसको कहा गया, अत्याहार का मतलब है अतिहार। अतिहार, अत्याहार का दो अर्थ है। एक अर्थ है कि जरूरत से ज्यादा प्रसाद लेना और दूसरा अर्थ संग्रह करना, जुटाते रहना कुछ ना कुछ, है ना। कुछ लोग आदत होती है जुटाने की, वस्त्र जुटाते हैं, एक अलमारी हो गई, दूसरी अलमारी हो गई, पांच चप्पल भी हैं, कई प्रकार के चप्पल हैं, जूते भी कई प्रकार के हैं, गाड़ियां भी कई प्रकार के हैं, संग्रह है ना, एक्यूमुलेट करना। तो ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, ये वैश्य का लक्षण। तो हम अपने आप को परख सकते हैं हम किस गुण में हैं, किस वर्ण में हैं। वर्ण की पहचान गुणों से की जा सकती है, और अगर हमारे पास संग्रह करने की भावना है तो समझ लें कि हम लोग अभी, हमारे अंदर ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। तो ब्राह्मण बनने के लिए ये गुण ये बताया गया है, सरलता, निष्कपट होना और साथ में सादा सरल जीवन बिताना। लेकिन केवल सरल जीवन बिताना ही उद्देश्य नहीं है, विचार हमारे जो है ऊंचा होना चाहिए। कोई सड़क पे है, झोपड़ी बनाई हुई है, सरल जीवन बिता रहा है, लेकिन उसका विचार जो है बड़ा निकृष्ट, तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, उसको शूद्र या उससे भी नीचे, या वर्णाश्रम धर्म से बाहर होगा वो। तो ब्राह्मण का अलग सरल जीवन, लेकिन साथ में ऊंचा विचार, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए सरलता अगर यहां पर बताया गया है, और साथ में सरलता अगर यह भी होता है कि जिस स्तर पर हम लोग हैं, भक्ति के जिस स्तर पर हैं, उतना ही प्रदर्शन करना, उससे ज्यादा नहीं। कपट की भावना यह भी है, अभी अनर्थ जो है हमें सता रहे हैं, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत रसिक बातें कर रहे हैं, है ना, मंजरियों की चर्चा कर रहे हैं, गोपियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब के समय नींद आती है, है ना, केवल प्रसाद के समय पूरा जागते हैं, जब करते हैं तो खूब नींद आती है। तो ये सरलता नहीं है। इसलिए सरलता का अर्थ यह होता है जो हम हैं वही हम हैं, कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर क्या होता है, कृष्ण एक ना एक दिन तो हमें दिखाई देंगे हम हैं क्या। कृष्ण हमें अपनी पहचान करा देंगे कि हम लोग वास्तव में उस स्तर में नहीं है जितना हम लोग सोचा करते थे, जितना अपने बारे में हम लोग सोचा करते थे, विचार करते थे, लोगों ने माला पहनाई, लोगों ने प्रशंसा की, लोगों ने गुणानुवाद किया आपका, आपको व्यास आसन दिया, आपका चरणामृत पान किया गया, आपका महाप्रसाद लिया, आपने सोचा यही वास्तव में मेरा क्या है, ये वास्तविक मेरी स्थिति है, मैं वास्तव में इस पोजीशन में हूं, आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि लोगों ने स्वीकार किया है, वोक्स पॉपुली जिसको कहते हैं, वोटिंग के कारण, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स आपके लिए थे आपकी प्रशंसा में, तो आपने मान लिया कि आप वही हैं और आप उस जाल में फंस गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस अर्थ को कहते हैं तरंग रंगनी, माधुरी कादंबरी में बता रहे हैं, तरंग रंगनी मतलब लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए जब वैष्णव, वैष्णव तो नहीं कह सकते उसको, तथाकथित वैष्णव फंस जाता है लाभ पूजा प्रतिष्ठा के कारण, तो यह सरलता का लक्षण नहीं है, कपट की भावना है, क्योंकि अनुयायी मिल जाएंगे, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, यश भी मिल जाएगा, लाभ पूजा सब मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण का वर्णन करते हुए बताया है कि शुद्ध भक्ति क्या है, सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है, समहात्मा सुदुर्लभा, भगवान गीता में कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति, उस भक्त के लिए जिस भक्त के लिए सब कुछ कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसे भक्त जो है बड़े दुर्लभ होते हैं, वैसे आत्मिका बुद्धि वाले भक्त बहुत कम होते हैं संसार में, दुर्लभ। इस कई प्रकार की आकांक्षा, कई प्रकार के हमारी जो इच्छाएं हैं हम लोग पूरा करना चाहते हैं भक्ति करते हुए, भौतिक इच्छाएं, तो गुरु ऐसे शिष्य की ऐसी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं कई बार, क्योंकि ऐसे शिष्य को सेवा में लगाए रखने के लिए, नहीं तो भाग जाएगा सेवा छोड़कर, और उसके ऊपर जो कृपा होती है गुरु की, लेकिन वो गुरु की कृपा जो होती है वो कौन सी कृपा है, सकपट कृपा, और वो भक्त जो शुद्ध भक्ति चाहता है उसकी बड़ी परीक्षा होती है, उसको अपमान भी सहना पड़ता है, उसको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति चाह रहा है, तो शुद्ध भक्ति चाहने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके रास्ते बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, उसका वो सामना करता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका कृष्ण प्रेम है, उसके जीवन का लक्ष्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं है, और इसके लिए वो गुरु की शरण में है, तो गुरु जो है उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, वो उस कृपा को कहते हैं निष्कपट कृपा। ये भी शिवजी की परिस्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है, महादेव की परिस्थिति भी ऐसी है, जो शिवजी के पास महादेव के पास इस प्रकार की भावना ले जाता है, इच्छाओं के साथ जाता है, भौतिक इच्छाओं के साथ जाता है, तो शिवजी जो है उसके ऊपर सकपट कृपा करते हैं, और शुद्ध भक्ति के लिए जाता है शिवजी के पास उसके लिए उसके ऊपर निष्कपट कृपा करते हैं, तो वैष्णव होते ऐसे ही वास्तव में। तो कहने का तात्पर्य है कि सरल हृदय का मतलब यही है कि मतलब गुरु की कृपा से या गुरु के आदेश अनुसार अगर हमें कोई पद या अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है या लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होता है गुरु की आज्ञा से, उनकी कृपा से, तो गुरु की कृपा समझकर उसको स्वीकार किया जाता है, लेकिन स्वीकार करने पर यह नहीं माना जाता है कि इसका अधिकारी मैं हूं और मेरे कारण ऐसा हुआ है। सफलता प्राप्त करने पर विशिष्ट जो है अपने गुरु को ही श्रेय देता है, और जो श्रेय स्वयं लेता है वो वास्तव में सत्य शिष्य नहीं है, वो मार्ग से भटका हुआ है, इसलिए उसका हृदय कभी सरलता से नहीं होगा, और इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो इसलिए हमने देखा भूतकाल में भी कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने प्रभुपाद की नकल करना चाहे, या कोई भी जो पूर्ववर्ती आचार्यों की नकल करना चाहेगा तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा। इसलिए महाभारत में क्या लिखा है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, महाजनो ये न गतः सपन्तः, महाजन जैसे कर गए हैं उनके पथ पर, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, उनकी नकल नहीं करनी है, ये सरलता है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है, ये ब्राह्मण का लक्षण है, ब्राह्मण जो है वो सरल होता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। और यह सरलता भगवान को बहुत प्रिय है। और ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में जिसमें भक्तों की सरलता को देखकर भगवान बड़े प्रभावित हुए, है ना। उनके निष्कपट भाव को देखकर भगवान बड़े प्रभावित हुए, जैसे कि हरिदास ठाकुर या संत तुकाराम की कथा सुनी होगी आपने, है ना। कैसे उनको पीटा गया, एक ब्राह्मण ने सड़क के बीच में पीट दिया संत तुकाराम को, लेकिन अगले दिन सुबह प्रातः काल में उस ब्राह्मण से क्षमा मांगने के लिए चले गए तुकाराम कि मेरे वजह से आपको बहुत दुख हुआ, है ना, लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया है, कोई अपराध हो तो मुझे क्षमा करें। तो ब्राह्मण जो है संत तुकाराम का हृदय, उनका विशाल हृदय देखकर पिघल गया उसका हृदय। बोले कि मैंने गलती की है, मैंने इसको मारा, कांटों से मारा बीच सड़क पे, लेकिन माफी मांगने ये आ रहा है मुझसे, कितना विशाल हृदय है इसका। तो इस प्रकार सरलता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में प्रचार के समय कई प्रकार से चुनौतियां आती हैं। आप प्रचार करेंगे तो भक्त बनेंगे, भक्त बनेंगे तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनकी, और अगर आप उस पद पे नहीं है जितनी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण तो देख रहे हैं ना, और कृष्ण हर जीव के हृदय को जानते हैं कि उसमें से कई जीव हैं, कई भक्त हैं जो समर्पित हैं, वो चाहते हैं शुद्ध भक्ति करना, लेकिन किसी कारणवश भी वो ऐसे गलत व्यक्ति के संग में आ गए जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन जो है गलत रास्ते पर चल रहा है। असत्संग के कारण ही पतन होता है, इसलिए महापुरुष ने कहा असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, ये तो वैष्णव का आचरण है। तो उस स्थिति में क्या वो व्यक्ति जो कपट से भरा है वो उन भक्तों की जिम्मेदारी ले पाएगा, क्या उन भक्तों को मार्गदर्शन देके उनको धाम जाने की तैयारी करा पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। कभी हम किसी के काउंसलर बनते हैं, कोई शिक्षा गुरु बनता है, कोई दीक्षा भी देने लगेगा, कोई दीक्षा गुरु भी होता है, शिक्षा गुरु भी होता है, लेकिन ये सब जिम्मेदारियां हैं। और खासकर हमारी संस्था में स्पष्ट बताना चाहेंगे, जब दीक्षा गुरु का कोई पद स्वीकार करता है तो दो परिस्थितियां होती हैं, एक निश्चित रूप से जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत वो दीक्षा गुरु बनते हैं, और दूसरा वो जो उतने उन्नत नहीं है लेकिन फिर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं प्रभुपाद के लिए, जो प्रभुपाद ने कहा हुआ है उनको कि आप लो जिम्मेदारी। जैसे अभी मायापुर में भवानंद प्रभु थे ना, जो भवानंद महाराज से पहले, उनसे पूछा था प्रश्न, उनसे पूछा था कि प्रभुपाद ने दीक्षा के लिए वास्तव में कहा है या नहीं कहा है, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने मुझे और इसोलेन जयपता का महाराज को बताया था कमरे में कि आप लोग दीक्षा देना करके, और 10,000 शिष्य बनाओ आप लोग। फिर प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर प्रभुपाद ने बोला कि मैं तो वृद्ध आदमी हूं, मैं इतने शिष्य नहीं बना सकता, मतलब मेरा तो समय हो रहा है तो मैं इतने शिष्य नहीं बनाऊं, आप लोगों को तो 50,000 शिष्य बनाने हैं। तो प्रभुपाद किससे बात कर रहे हैं उस समय, 74 की बात, जबकि वो इतने पुराने नहीं थे। तो प्रभुपाद की आज्ञा से ये आगे कार्यक्रम बढ़ाया जा रहा है, परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब उत्तम वैष्णव महाभागवत जो महाप्रभु के द्वारा भेजा गया है उनकी आज्ञा से कोई कार्य करता, अमार आज्ञा गुरु हो या तारा ये देश, तो उस आज्ञा में शक्ति है, उनमें शक्ति हो या ना हो लेकिन उस आज्ञा में शक्ति है। पेट्रोल पंप में जाते हैं, गैस स्टेशन में जाते हैं, आपके गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, गैस डाला जाता है, CNG, वो मालिक नहीं है पेट्रोल पंप का, लेकिन उसमें क्षमता है, शक्ति है पेट्रोल देने की, वो आपको पेट्रोल दे सकता है। तो इस तरह से दीक्षा गुरु की जो सेवा ली जाती है ये भी सेवा है और ये जिम्मेदारी है हमारे संस्था में। तो ये सब स्पष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें, है ना। हम लोग कहीं सपने की दुनिया में ना रहे, वास्तविकता की पहचान हम सबको होनी चाहिए। तो इस तरह से गुरु क्या करते हैं, वो हमें परंपरा से जोड़ते हैं। जब किसी भक्त की दीक्षा होती है, वैष्णव दीक्षा होती है परंपरा में, तो वो केवल गुरु से नहीं जुड़ रहा है, वो पूरी गुरु परंपरा से जुड़ रहा है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषो विदुः। भगवद गीता का कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय। उस अध्याय का शीर्षक क्या है? दिव्य ज्ञान। भगवान कह रहे दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? परंपरा के द्वारा। भगवान बोल सकते थे एवं गुरु प्राप्तम, लेकिन भगवान ने क्या बोला? एवं परंपरा प्राप्तम। तो ये जो परंपरा गुरु के साथ जो जुड़ते हैं तो पूरी परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं, तब जाके हमें महाप्रभु की कृपा मिलती है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए इन सब के लिए क्या चाहिए? शास्त्रों का ही नहीं बल्कि हमें साथ साथ गुरु और साधु के ऊपर भी विश्वास होना, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा की आवश्यकता है। तो आर्जुन का मतलब यह है कि प्रचार हम करेंगे, भक्ति बनाएंगे, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को भी समझना है। इससे कई बार बहुत ज्यादा हाथ फैला पांव फैलाने पर क्या हुआ कि जहां पर गुरु ने हमें नहीं कहा जाने के लिए वहां भी चले गए प्रचार करने के लिए, अपनी क्षमता से भरे परे, क्षमता से बाहर, तो क्या हुआ? पतन हो गया। इसलिए अपने को संभालते हुए हमें प्रचार करना है। जब हम स्वयं ही नहीं रहेंगे तो प्रचार कौन करेगा? तो इस वजह से क्या है कि बहुत आवश्यक है। तो ये हमने बात बता रहे थे कि सरलता आर्जुन, सरलता का अर्थ ये है कि हम लोगों को अगर कोई आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो हमें उतना ही स्वीकार करेंगे जितना है, वास्तव में उतना तो चल जाएगा, लेकिन उससे अधिक अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोग समझ लीजिए खतरे में। और हम लोगों को धोखा दे सकते हैं जो बेचारे सरल हृदय वाले हैं। सरल हृदय वाले बेचारे धोखे में पड़ जाते हैं, उनका हृदय मन बड़ा सरल है, उस सरलता से कोमल श्रद्धा लेकर आपके पास आए, आपके पर विश्वास लेकर। लेकिन अगर आपने उनको इस प्रकार धोखा दिया, ये धोखा है वास्तव में, कपट, तो फिर वो क्या होगा? आज नहीं तो क्या होगा, कुछ समय के बाद, कुछ सालों में कृष्ण जो है सब कुछ बता लें। तो ये कपट की भावना से बचना, और ब्राह्मण का ये बताया है क्योंकि ऐसे इसमें कई गुण हैं जो ब्राह्मण में पाए जाते हैं, और वैश्य क्योंकि पहले से ही ब्राह्मण है तो उसमें तो निश्चित रूप से गुण होते ही हैं। और इसके अलावा है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है, भगवान गीता में बता रहे हैं, वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या, ये वाणी की तपस्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। दुख की बात है आजकल बहुत कम भक्त लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें। कोई अगर पढ़ता भी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्करेज कर देते हैं कि तुम क्यों इतना पढ़ रहे हो। वो खुद तो नहीं पढ़ रहा है, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देते हम। प्रभुपाल ने स्वयं बोला कि मैं चाहता हूं कि भक्ति शास्त्री शुरू किया जाए, भक्ति वैभव शुरू किया जाए, उसके बाद भक्ति वेदांत का कोर्स हो, उसके बाद भक्ति सार्वभौम हो, और उसमें ये किताबें पढ़ाई जाए मेरी, और भक्त लोग इसमें पढ़े, उसका एग्जामिनेशन दें, और इसकी तुलना हम लोग एमए पीएचडी डिग्री से करें। तो प्रभुपाल ने चाहा कि उनके भक्त जो है वो पढ़े, और प्रभुपाल ने कहा मेरा कंप्लेंट है कि मेरे भक्त जो है वो किताबें नहीं पढ़ते मेरे, और ये समस्या है। इसलिए आजकल की समस्या कि अगर पूरे हफ्ते में हम किसी को 10 पेज भी कहते हैं पढ़ने के लिए, वो भी बहुत भारी लगता है, बहुत भारी लगता है। 10 पेज कैसे पढ़ सकते हैं? पूरी संभव ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर आप 10 पेज नहीं पढ़ सकते हैं, तो 16 वाला कैसे कर रहे हैं फिर आप? वो भी उसमें भी डाउट है, फिर तो उसमें ही शंका है। जो 10 पेज किताब नहीं पढ़ सकता प्रभुपाद की, इसका मतलब वो 16 वाला भी कर रहा है, ये भी जो है बहुत बड़ी शंका है। तो इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, लेकिन सावधान रहे, इसमें भी एक खतरा है। इससे खतरा क्या है? जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं ज्ञान कर्मादि आवृतम, एक होता अनावृतम एक होता आवृतम, ज्ञान का मिश्रण। ग्रंथों को पढ़ने में लाभ भी है और अधिक पढ़ने में खतरा भी है। अधिक पढ़ने का अर्थ क्या होता है? जितना गुरु ने नहीं कहा, जितना गुरु ने कहा है वो अध्ययन भक्ति में गिना जाएगा, और जो हमने अधिक पढ़ा है, जो गुरु ने नहीं कहा है, वो ज्ञान में गिना जाएगा। तब हम ज्ञानी बन जाते हैं, भक्त नहीं बन जाते, तब भक्त नहीं रहते हैं फिर। और इसलिए कविराज गोस्वामी लिखा है बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त ब्रह्म होय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वेद, चारों वेद उपनिषद सारे पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, प्रखांड पंडित हो गए, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, जब गुरु का प्रवचन सुना तो उनके प्रवचन में कमियां नजर आने लगी। अरे इससे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं, मैं क्यों उनका प्रवचन सुनूं? तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ज्ञान भारी हो गया। और जो शास्त्र हमें शुद्ध करना चाहिए, शास्त्रों की वाणी हमें शुद्ध करनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, उससे हम और ज्यादा अशुद्ध हो गए, अहंकार हमारा बढ़ गया। और अहंकार बढ़ने के कारण क्या हो गया, हम वैश्य अपराध करने में तैयार हो जाते, इसलिए हमें लगता है कि कोई कोई है ही नहीं कुछ, अरे इनको क्या बोलना आता है। जैसे एक हमारे गुरु भाई प्रवचन दे रहे थे, तो किसी भक्त ने जाके हमारे गुरु महाराज को बताया कि महाराज हमें उनका प्रवचन इतना खास अच्छा नहीं लगता, वो बहुत हल्का फुल्का बोलते हैं, उनके प्रवचन में वेट नहीं है। तो प्रभुपाल ने कहा उनको कहो वो मंदिर आना बंद करे, मारने की लाइन उतर दिया, उसको बोलो मंदिर आना बंद करे, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने समर्पित हैं गुरु के लिए, वो ये नहीं देख रहा है, अगर उसको प्रवचन अच्छा नहीं लगता है तो घर पे बैठो बोलो। महाराज तुरंत उतर दिया, महाराज बहुत गुस्सा हुआ इस बात को सुनकर। इसका मतलब क्या है कि गुरु जो है वो केवल शुष्क ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा भावना देखकर। क्योंकि जब सेवा की आवश्यकता होती है तो ऐसे जो तथाकथित जो ज्ञानी है नजर नहीं आते, भाग जाते सब। भक्त की पहचान सेवा से होती है, हनुमान जी की पहचान सेवा से होती है, हनुमान जी की पहचान ज्ञान से नहीं है, पांडवों की पहचान ज्ञान से नहीं है, उनकी सेवा की भावना से है, प्रहलाद महाराज की पहचान उनकी ज्ञान से नहीं है, उनकी स्मरण की भावना से है, इन सब में सेवा की भावना है। गोपियों की पहचान ज्ञान से नहीं है, उद्धव जी को परास्त कर दिया सेवा के कारण है, उद्धव जी ज्ञान देने के लिए आए थे मथुरा से, जिसको कहते हैं क्या उद्धव संदेश, संदेश क्या देते हो, वो तो देख के हैरान हो गए, ये कैसा प्रेम है कृष्ण के लिए, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। बृहस्पति के शिष्य है उद्धव जी, कितने बड़े विद्वान होंगे, कृष्ण के बड़े निकट थे, लेकिन जब गोपियों का प्रेम देखा तो फिर उनको लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके सामने, मुझे तो यहां पर एक धूली में कि धूली मिल जाए वही बहुत है, यहां लता पत्ता बन जाऊं वही पर्याप्त है मेरे लिए, तो उसके लिए वो कामना करने लगे। तो ये ज्ञान बड़ा भारी पड़ जाता है, इसलिए प्रभुपाद ने एक भक्त को देकर बोला, जब उस देखा कि बहुत सारी टीकाएं रखी है उसने, संस्कृत व्याकरण की किताब रखी है, बहुत सारे आचार्यों की टीका जो है उसने कंधे पर लाद के रखी है, प्रभुपाद ने कहा तुम यू आर लाइक ए डोंकी, प्रभुपाद ने बोला। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं समझा नहीं, तुम गधे हो क्यों इतना सारा बोझ उठा रहे हो, है ना। फिर प्रभुपाद बोले यू विल बी माया, तो बोले प्रभुपाद मुझे समझ में नहीं आया मैं माया में हूं, हाँ यू विल बी माया, माया में कैसे पड़ जाऊंगा, ये तो आचार्यों की टीका है इसमें, तो यू विल थिंक दैट यू नो मोर देन योर गुरु, यू विल थिंक दैट यू आर अ सुपीरियर वैष्णव, ये समस्या है, और वास्तव में वो माया में चलेगा। फिर बाद में प्रभुपाद के मुख से निकल गया ना, वो वास्तव में माया में चलेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, शास्त्र जो है ना वो फिर कई बार शस्त्र का कार्य करते हैं, अज्ञानता को नहीं काटते फिर वो ज्ञान को काटने लगते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है ब्राह्मण ज्ञान। यहां पर लिखा है ब्राह्मण का, प्रभुपाद जी ने कहा इतना पढ़ो, गुरु महाराज ने कहा इतना पढ़ो, उतना पढ़े, और वो पढ़ना चाहिए, वो अध्ययन आवश्यक है, ये नहीं कि वो अध्ययन भी जो है माया है, नहीं वो अध्ययन आवश्यक है। अगर गुरु महाराज कहते 2 घंटा पढ़ो तो 2 घंटा पढ़ना है, वो आवश्यक है, लेकिन सोचे हम 5 घंटे पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, ताकि हम सबको परास्त कर सके, अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन कर सके, लोग हमारे प्रवचन की प्रशंसा कर सके, कितना सूक्ष्म है देखिए माया का चाल, प्रशंसा तो मिल जाएगी लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विद्वत्ता से नहीं, सुंदर सुंदर प्रवचन से नहीं, किससे भगवान प्रसन्न होते हैं, या भगवान अपने आप को किसके समक्ष प्रकट करते हैं, जिसके सामने वो खुद अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। तो इसलिए ये ज्ञान, ज्ञान का इसलिए क्या है कि एक वैष्णव जो है शास्त्रों का अध्ययन करता है इस उद्देश्य से कि उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सके और उसका वितरण किया जा सके, ज्ञान का वितरण होना चाहिए। ब्राह्मण अगर ज्ञान का वितरण नहीं करता है तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक घड़ा है उसमें छेद हो जाए, पानी भरा हुआ है, वो सारा पानी घड़े से निकल जाता है। इसे ज्ञान का वितरण होना चाहिए। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हम पढ़ते हैं, हम याद नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता है कि हम उसको बोलते नहीं है। कलयुग में स्मरण करने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है? कीर्तन है। कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होता है। कलयुग में कुछ भी याद रखना है उसके लिए हमें कीर्तन करना होगा, प्रचार करना होगा, उसका वितरण करना होगा। और जितना हम वितरण करेंगे उतना हमें याद रहेगा, बल्कि ज्यादा याद रहेगा। लेकिन केवल पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में, हृदय में जाएगा नहीं, बैठेगा नहीं। वो से जो हम सुनते हैं या जो हम पढ़ते हैं उसे बोलना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान का मतलब यही है, पढ़ तो लिया लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं किया। जैसे हम बोले लोगों को प्रभु जी आपको मंगल आरती में आना चाहिए, 16 माला का जप करिए, खुद नहीं कर रहे, खुद मंगल आरती में नहीं आ रहे, हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं। अपनी आचारी प्रभु जीवेर सिखाए, यह है विज्ञान, है ना। जब महाप्रभु रामानंद राय का संवाद हो रहा था, महाप्रभु क्या बोला, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र केन होय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। उसमें प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, वन हु नोज द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ही कैन बिकम गुरु। प्रभुपाद ने यह ट्रांसलेशन नहीं किया, वन हु नोज द नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कहते हैं साइंस। साइंस का मतलब है जो ज्ञान आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में लागू किया है उसको विज्ञान कहते हैं। इसे गीता में बोला, ज्ञानम विज्ञानम साहित्यम, ज्ञानम विज्ञानम साहित्यम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको लागू भी करना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर अनुभूति नहीं होगी। इसलिए भागवत कहता है भक्ति ही परेशान भाव विरक्तिर। जब ज्ञान को लागू करते हैं आध्यात्मिक जीवन में तो क्या होता है, वो ज्ञान विज्ञान के रूप में प्रकट होता है, स्वतः ही विरक्ति आती है फिर ऐसे विज्ञान से। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की किताबों में, उसको जितना हो सके उसको हम अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जैसा अभी हमने बोला अत्याहार नहीं करना, ये तो हमें पता चल गया ब्राह्मण का एक गुण है, लेकिन फिर भी हम अत्याहार कर रहे हैं, तो ज्ञान तो हो गया लेकिन विज्ञान नहीं होगा। फिर समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में इसका अर्थ क्या, इसका उद्देश्य क्या, क्यों ऐसे शास्त्रों में बोला गया। युक्त वैराग्य के नाम पर हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। ये युक्त वैराग्य जी देखिए, है ना, संग्रह करते जा रहे हैं युक्त वैराग्य के नाम पर। 3 मोबाइल्स की आवश्यकता है क्योंकि प्रचार में बहुत जरूरी पड़ता है। ये VIPs के लिए है, ये लाइफ मेंबर्स के लिए, ये काउंसलर्स के लिए है, ये कंग्रीगेशन मेंबर्स के लिए, पुजारीज के लिए, ये प्रीचर्स के लिए, ब्रह्मचारीज के लिए, गृहस्था के लिए, सबके लिए मैंने एक एक मोबाइल रखे हुए हैं। ये युक्त वैराग नहीं है, ये भोग है, भोग। वास्तव में जय धर्म में तो भक्त ठाकुर ने स्पष्ट लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वास्तव में युक्त वैराग्य तो मध्यम अधिकारी के भक्तों के लिए है, उनके लिए उन्हीं को अधिकार है इसका, युक्त वैराग्य भक्त ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन कनिष्ठ भक्त लगा सकते हैं अगर गुरु के द्वारा आज्ञा प्राप्त हो। उच्चतर वैष्णव अगर कनिष्ठ भक्तों को अनुमति देते हैं तब वो लगा सकते हैं सेवा में किसी ना किसी वस्तु को, अन्यथा नहीं। नहीं तो होता क्या है कि किसी नौसिखिए भक्त को कंप्यूटर दे दिया जाए तो वो बोलेगा कि वेदाबेस में यूज करना है इसमें, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करूंगा, इनविटेशन कार्ड्स बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ब्रोशर्स बनाऊंगा, प्रीचिंग के अलग अलग मटेरियल्स तैयार करूंगा। क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं है भजन में तो वो उसके लिए भारी पड़ रहा है ना। और साथ में क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी भी दे दी गई है उसको, तो भरपूर दुरुपयोग करेगा उसका वो, और निश्चित रूप से वो माया में जाएगा। इसलिए युक्त वैराग्य सबके लिए नहीं है, पहले वैराग्य फिर युक्त वैराग्य। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर यस्तम हम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या, महाप्रभु ने वैराग्य विद्या सिखाई, अपनी ही भक्ति करके दिखाया, स्वयं कृष्ण है। तो कहने का तात्पर्य है कि विराग के लक्षण प्रकट नहीं हुए लेकिन युक्त वैराग्य में चले गए। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते, है ना, हर वस्तु का संबंध कृष्ण से है ये जानते हुए वो कृष्ण की सेवा में लगाता। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत त्याम जगत, है ना, तो वो युक्त वैराग्य। तो जब तक तो उस स्तर पर नहीं पहुंचाते हैं तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। और साथ बताए आस्तिक्यम धार्मिकता, ब्राह्मण धार्मिक होता है, स्वाभाविक है उसके लिए, शास्त्रों का अध्ययन करता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ इत्यादि करता है, और विशेष रूप से उसकी श्रद्धा शास्त्रों में रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं फेथ इंप्लाइज दैट वी शुड नॉट इंटरप्रेट द वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर बट टेक इट एज इट इज। व्हेन कृष्णा सेज इन भगवद गीता सरेंडर टू मी, वन शुड नॉट थिंक हिमसेल्फ वाइजर देन कृष्णा एंड क्लेम दैट इट इज नॉट टू द पर्सन कृष्णा हुम वी हैव टू सरेंडर बट टू स्पिरिट विद इन कृष्णा। फेथ ऑल्सो मीन्स टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस विदाउट मोटिवेशन एंड विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, बिना किसी बाधा के भगवत सेवा में लगना, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा और साधनास्तिकम का अर्थ यह भी है कि हम लोग भगवान कृष्ण की बातों को यथारूप स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, हम कहते हैं नहीं, उनके अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर जो कोई और है, उनको शरणागत होना है। अंदर बाहर क्या है? तो इस प्रकार बहुत सावधान रहना चाहिए इसमें। और तो ये आस्तिकम के बारे में बताया यहां पर। तो ये 9 गुण हैं जिस पे विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें एक जो गुण है शौचम, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे हम, क्योंकि पिछली बार हमने जब बताया था थोड़ा सा कम बताया था आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए बड़ा आवश्यक है इन बातों को ध्यान रखना। तो जैसे पहला तो हमने बताया था कि ब्राह्म मुहूर्त में सुबह उठना, प्रभुपाद लिखते थे टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग 1.5 आवर्स बिफोर सनराइज इज कॉल्ड ब्राह्म मुहूर्त। ड्यूरिंग दिस ब्राह्म मुहूर्त स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर रिकमेंडेड। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अर्ली इन द मॉर्निंग हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द डे। तो उठने के बाद, तो ये तो खैर कई बात इसलिए लिखी है यहां पर क्योंकि पाश्चात्य जगत में ये भी नहीं होता। चाइना और जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पे लोग सुबह उठ के दांत भी नहीं साफ करते हैं, स्नान तो दूर की बात। कोरिया में बता रहे थे हमारे इस ग्रेज गोपेश्वर पर गए थे कि वहां पे कई लोग जो है वहां पे फैमिलीज हैं जहां परिवार के सदस्य है, अपना वीकेंड्स बताते हैं वॉशरूम्स में। मैं राइट, ये उन्होंने देखा है, सियोल गए थे। तो प्रभुपाद कहते थे जब मैं न्यूयॉर्क गया तो वहां पे नहाना भी बड़ा मुश्किल होता था, स्नानम ये भी प्रसादनम। प्रभुपाद को भी दूर दूर जाना पड़ता था नहाने के लिए, बहुत बड़ी तपस्या थी वहां स्नान करना भी। और किन लोगों के बीच में रह रहे थे प्रभुपाद? हिपीस, जो नहाते ही नहीं थे, बड़े बड़े बाल, उनके शरीर से बदबू आ रही है, नशा करके आए हुए हैं, पी के आए हुए हैं, और आपके सामने आके खड़े हो गए, प्रभुपाद जी के ऊपर जो है धुआं फूंक रहा है। प्रभुपाद ने उसको सहन किया, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद वैष्णव है, वो केवल ब्राह्मण नहीं है, प्रभुपाद वैष्णव है, इसलिए उन्होंने सहन कर दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी ऐसी गंदगी में रहे, क्योंकि अभी तक हम ब्राह्मण भी नहीं बने, है ना। तो प्रभुपाद की हम नकल नहीं कर सकते, कहने का तात्पर्य है। मोबाइल्स प्लीज आप डिपॉजिट कर दीजिएगा अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण का अर्थ ये भी होता है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसको, जब भी उसको कुछ त्यागना पड़े तो तैयार रहना है। गीता भगवान कहते त्यागा शांति मृच्छति, त्यागने से शांति मिलती है। तो कभी कुछ त्यागना पड़े तो तैयार होना पड़ेगा, है ना, ये नहीं पकड़ के बैठे रहे। तो प्रातःकाल उठे, इसमें लिखा है स्नान इत्यादि करें, और अगर कोई 1 घंटे तक अगर कोई विश्राम कर लेता है, निद्रा में चले जाता है, तो उसके बाद स्नान करना बहुत जरूरी है। और जो बाहर कार्य करते हैं या व्यवहारिक रूप में देखा जाए, ब्राह्मणों के लिए अति आवश्यक है कि सुबह और शाम को 2 बार तो कम से कम स्नान करें, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग सुबह ही नहाते, शाम को नहीं नहाते। वास्तव में गायत्री करने से पहले, अभी गायत्री के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, वो अलग से चर्चा करेंगे पूरा, लेकिन गायत्री करने से पहले आवश्यक है, अच्छा होता है कि स्नान किया जाए। स्नान करके 12 तिलक लगा के नीचे आसन लेके आचमन करके फिर गायत्री करें और प्रॉपर संध्या में करें, यानी जंक्शन पीरियड में किया जाए। स्टैंडर्ड तो ये है, लेकिन क्योंकि आप लोग कई बिजनेस में हैं, कई ऑफिस जा रहे हैं, कुछ बाहर रहते हैं आप लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ तक कि मंदिर में भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि अलग अलग सेवा में व्यस्त होते हैं, तो ऐसे में कम से कम प्रातः काल और सायंकाल तो निश्चित रूप से हमें स्नान करना चाहिए। और शौच इत्यादि की बात तो बहुत ही आवश्यक है, स्नान करना, हाथ धोना, पांव धोना, ये तो मतलब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये भी नहीं करते हम लोग। ठंड के मौसम में सॉक्स हमें पहनना होता है, शौच क्रिया करके आते हैं, सॉक्स उतारने में दिक्कत होती है हमें, क्योंकि पांव धोना पड़ेगा, ठंडा पानी है। तो एक बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण को आलसी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को आलसी नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से सफाई रखने में। अब देखें कमरे में, बिस्तर में ऐसी कपड़ा फैला हुआ है ना, सुबह उठे हुए हैं, गद्दा नहीं उठाया, चादर नहीं फोल्ड किया, और जिस स्थान पे अब लेटे हैं गद्दा उठाने के बाद उस स्थान को साफ करना चाहिए, पोंछा लगाना चाहिए वहां पर, क्योंकि जो सोया व्यक्ति है वो मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। अगर आपने सोए व्यक्ति को देख लिया वो भी अशुभ है। इसलिए भक्त ठाकुर लिखते हैं, जीव जागो गोरा चंद्र बोले को तो निद्रा जाओ माया पिशा चीरा को, कब तो सोते रहोगे, रात में उठो है ना, तुम्हें देखकर मुझे भी नींद आ रही। तो इसलिए क्या है, मृतक व्यक्ति होता है, जो है व्यक्ति वो तो मरा होता है व्यक्ति वास्तव में। तो इस प्रकार उस स्थान को साफ करना चाहिए जहां पर हम सोते हैं, बहुत आवश्यक है। और स्नान करते हुए भी हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, या कई अन्य ऐसे मंत्र हैं उसका उच्चारण करना चाहिए। हमारे तो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे सुलभ है। उसके बाद फिर से तिलक इत्यादि लगाकर, और ये भी बड़ा आवश्यक है कि हमारे नाखून नहीं हो, नाखून और बाल इनको बढ़ाने पड़ जाते हैं कई कारणों से, तो बाल छोटे रखें, बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए ईपीस की तरह, है ना। हमारे ईपी संप्रदाय नहीं है, हमारा वैष्णव संप्रदाय है। महापुरुष सनातन गोस्वामी को जब देखे दाढ़ी बढ़ा के रखे हैं, तो सनातन गोस्वामी के लिए महापुरुष ने कहा इनको ले जाओ घाट में, शेविंग वगैरह करा के लाओ, स्नान करा के। महापुरुष तुरंत भेज दिया उनको। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हम भी शेविंग करते हैं, परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद, क्योंकि हम सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सब कुछ तो धो लेते हैं, हम पांव धो लिया, नहा भी लिया, सब कुछ कर लिया, कपड़े भी धोए हैं, सब कुछ धोया हुआ है, लेकिन एक जो है पकड़ में आता है वो हम सबका क्या है, बीट बैग। बीट बैग अपना अपना देखिए, प्लीज खुद आप परखिएगा और खुद देखिए बीट बैग आप सबके कितने अच्छे हैं, साफ हैं, गंदे हैं, नए हैं, पुराने हैं। कई बार तो लोग इतने ज्यादा आलसी होते हैं कि सफाई नहीं करते और जैसे ही गंदा हो जाता है नया बीट बैग खरीद लेते। दुर्दैव में दृश्य में हा जनी ना अनुराग, महापुरुष कहते हैं मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा कोई अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ इस हरिनाम में। चलो ठीक है, हरिनाम में उत्पन्न नहीं हुआ, बीट बैग तो साफ रखो कम से कम, जिसमें जपमाला रखी है तुलसी की, है ना। तो बीट बैग में माला है, और सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये बीट बैग। इस बीट बैग के भीतर जानते हैं क्या है, पूरा गोलक वृंदावन है, पूरा गोलक वृंदावन आपके बीट बैग में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन सब इसके अंदर है। जो आप इच्छा करना चाहते हैं, जो आप इच्छा पूरी करना चाहते हैं, ये बीट बैग के अंदर जो माला है उससे होगी। माला कभी दिखाते नहीं है बाहर, उसको गुप्त रूप में रखा जाता है, तो इसलिए उसको बीट बैग में रखा जाता है, थैली में रखा जाता है। तो इसलिए ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने यहां तक बोला है कि जब करने से पहले हमें अपने बीट बैग की आरती भी करनी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। यहां तक उन्होंने बताया, वन शुड वर्शिप वंस ओन बीट बैग बिफोर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन हम लोग जैसी सोलह माला हो जाती है उसको ऐसे फेंक देते हैं जैसे कि मतलब बहुत बड़ा जैसे छुटकारा मिला हुआ, टेंशन दूर हुआ हमारा, कम से कम अगले दिन के लिए हमारी छुट्टी हो गई। तो इसलिए बीट बैग को साफ रखना बहुत आवश्यक है। और गर्मी में पसीना आता है धूप के कारण, दिल्ली में तो खैर इतना नहीं होता, ड्राई हीट है यहाँ पर, बम्बई में जैसे, यहाँ तक साउथ में कई जगह पे, या कलकत्ता में भी जहाँ पर समुंदर है, पानी ज़्यादा यहाँ पे है, परस्पिरेशन बहुत होता है, तो वहाँ पे बहुत आवश्यक है नियमित रूप से स्नान करना, अपने आप को साफ रखना, ये बहुत ज़रूरी है। स्मशान घाट में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, आने के बाद तुरंत मंदिर में नहीं जाना चाहिए, सीधा शौच क्रिया के लिए बाथरूम में जाना चाहिए, वॉशरूम में नहाने के लिए। बाल कटवाते हैं तो उसके बाद तुरंत नहाना चाहिए। जो बाल कटवाया व्यक्ति है बताते हैं, जिसने हेड शेव किया है, चाणक्य पंडित कहते हैं जो हेड शेव करता है व्यक्ति, अगर वो स्नान नहीं करता है वो व्यक्ति चंडाल के समान है, वो चंडाल ही है वास्तव में जो हेड शेव करेगा, नहाता नहीं है, जो हेड शेव कर रहे हैं या फेस शेव कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। और सभ्य व्यक्तियों के लिए, ये सभ्य व्यक्तियों के लिए, ये भक्तों का गुण नहीं बता रहे हम, कोई भ्रमित ना हो जाए भक्तों का, ये भक्तों का गुण नहीं है, ये एक सभ्य व्यक्ति का गुण है। एक सभ्य आर्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में, ये एक डेली कल्चर था लोगों का, इसलिए शौच क्रिया के स्थान भी घरों से दूर होते थे, और वहां नदियां होती थी, लोग वहीं पे मल त्याग कर शौच क्रिया करके वहीं स्नान करके वहीं से वापस घर लौटते थे। आजकल क्या है, कलयुग में एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब कुछ एडवांसमेंट हो गई है, सबकी अटैच बाथरूम हो गया है, कमरे के अंदर वॉशरूम, बताइए कितनी बार हम कमरों को कंटामिनेट करते हैं, कलयुग में कैसे रह पाए कोई व्यक्ति ब्राह्मण, बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई अगर घर बनाए आगे चलकर तो ध्यान रखे अपना जो शौच क्रिया का स्थान है वो बाहर रखे कमरे से, कमरे के अंदर नहीं रखे, ये आधुनिक विकास है, हमारी वैदिक परंपरा नहीं है, वैदिक प्रथा नहीं, दूर बोले आपका वो वॉशरूम का है, टॉयलेट का, वो तो वहां है, दूर चले जाओ, वो बेचारे को आधा किलोमीटर दूर चलना पड़ता था लोटा लेके वहां तक जाएगा लेकिन उससे क्या है कि घर से घर साफ रहता है। तो पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है, पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जब ब्राह्मण लोग भी जब शौच क्रिया के लिए जाने लगते सुबह नवद्वीप में, घरों से निकलना चाहते तो निमाई क्या करते, बाहर से खिड़कियां दरवाजे बंद करते थे, है ना, अटैच बाथरूम नहीं था गांव में, तो होता नहीं अटैच बाथरूम, अंदर से जोर जोर से चिल्लाते हो। तो इसलिए ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और प्रसाद जब ले लेते हैं, प्रसाद लेने के उपरांत वो स्थान साफ करना चाहिए, और उसके उपरांत जब हम लोग उठते हैं हाथ तो धोए, साथ में पांव भी धोए, क्योंकि हम लोग प्रसाद माहौल में चलते हैं, या जहां भी हम लोगों ने प्रसाद दिया है आसपास कहीं पांव लग जाता है हमारा, कहीं घर पे भी लेते हैं अगर हम, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, पांव भी धोना चाहिए, हाथ और पांव दोनों धोना चाहिए। अगर आपने देखा होगा वैदिक प्रथा क्या है, प्रसाद लेने से पहले धोते हैं हाथ पांव धोते हैं, प्रसाद लेने के बाद भी धोते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो सफाई में ध्यान रखना चाहिए, शौच में ध्यान रखना चाहिए। और प्रसाद जब लेते हैं, ये तो पता ही आप सबको कि दाएं हाथ से लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन कई लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, जैसे कि जैसे जूस दिया जाता है कई बार आपको, जैसे आपको नींबू पानी दे रहे हैं या बेल का जूस देते हैं, तो अधिकांश हम देखते हैं कि भक्त लोग क्या करते हैं, उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखने के बाद वो लेफ्ट साइड से ऐसे पी ले लेते हैं मुंह में लगाकर, फिर उसको नीचे रख लेते हैं, हाथ आपका झूठा हो गया, फिर उसको आपने कपड़ों में ऐसे ऐसे लगा, ऐसे ऐसे हाथ लगा के बात भी कर रहे हैं, तो आपके कपड़े भी झूठे हो गए फिर। तो इसलिए जब हम पीते हैं या खाते हैं वो दोनों दाएं हाथ से होना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं, प्रसाद के साथ बाएं हाथ बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, भले पानी भी पीना हो कुछ भी प्रसाद भी लेना हो वो दाएं हाथ से करना चाहिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर वैसे बताया गया है जो नियम है शास्त्रों में इस प्रकार से, सन्यासी लोग हैं उनके लिए आदेश है कि तीन बार स्नान करें, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में है वो दो बार स्नान करें, ये बहुत जरूरी है। और निद्रा भी उतना ही ले जितना आवश्यक है, बीमार है तो अलग बात है, ये बीमार नहीं है तो 6 या 6.5 घंटे पर्याप्त, प्रभुपाद ने बोला है कि वन इज सब्जेक्टेड टू मोड ऑफ इग्नोरेंस इफ वन स्लीप्स मोर देन 6 आवर्स, भगवद गीता में लिखा। इसलिए वन मस्ट बी मॉडरेट इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। इसलिए बताया था कि अगर हम लोग 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकते हैं तो हम लोग सत्वगुण के कार्य कर सकते हैं, कमरे की सफाई, स्नान इत्यादि कर लें, गार्डनिंग कर लीजिएगा, वॉक में चले जाइए, लेकिन 8-10 घंटे सोना ये भक्ति के लिए भी ठीक नहीं है और ये ब्राह्मण का तो लक्षण है ही नहीं। और उसके बाद जब सोते भी हैं तो सबसे अच्छा यही है कि हम लोग बाईं तरफ करके सोएं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ सोएं, क्योंकि जो डाइजेशन का एरिया है ये लेफ्ट साइड में होता है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे करके सोते हैं, लेफ्ट साइड करवट लेके सोते हैं, तो डाइजेशन भी आपका अच्छा होगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान रहे और इन बातों का बड़ी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में बहुत आवश्यक है कि हम लोग बड़े कॉन्शियस हों आसपास। जैसे कई बार हम बाथरूम में गए, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, कोई बंद नहीं कर रहा, पानी बह रहा है नलके में, बंद नहीं कर रहे हम। ब्राह्मण का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपवित्र स्थान में गया लेकिन जब वो बाहर निकला तो उस स्थान को भी पवित्र करके आता है वो, ये ब्राह्मण। अब ये कमरे में गए, कमरा गंदा था पहले, लेकिन जब आप कमरे से बाहर निकले तो कमरा साफ करके निकले आप। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी जाते हैं किसी गेस्ट हाउस में या कहीं रहने, धाम चले गए या मायापुर वृंदावन कहीं चले गए, तो हम लोग जब निकलते हैं तो कमरा और गंदा करके चले जाते है ना। वहां कहीं प्रसाद पड़ा होता है, प्रसाद के प्लेट्स पड़े होते हैं या चादर इधर उधर होता है, सब कुछ फैला होता है सामान। लेकिन जो असली ब्राह्मण होते हैं वो कमरे को और ज्यादा साफ करके जाते हैं जाने से पहले, और इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। उनको ये लगता है कि ये संपत्ति, ये ऊर्जा, ये कृष्ण की है, ये नहीं कि किसी और का गेस्ट हाउस है, तो वहां भी वो सचेत रहते हैं। और साथ में जो धन अगर है भी किसके बाद, बहुत ज्यादा धन है, तो इसके खर्चे का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। रूप गोस्वामी ने सिखाया आदर्श, उन्होंने उदाहरण स्थापित किया। जो उन्होंने धन प्राप्त किया था उन्होंने 50% उसमें से ब्राह्मणों को, वैश्यों को दिया, 25% जो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को दिया, 25% उन्होंने रखा आपातकालीन स्थिति के लिए रूप गोस्वामी ने। तो इस प्रकार बड़ा आवश्यक है कि अगर हम जो धन संग्रह करते हैं उसको कृष्ण भावना के कार्य में लगाएं, प्रचार प्रसार के कार्य में लगाएं, और अधिक धन संग्रह करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और यहां तक कि जब पानी भी पीते हैं, भागवतम क्लास हो रहा है, आप भागवतम क्लास दे रहे हैं, ठीक है, आपको क्लास देने का मौका मिला, आपको पानी दिया जाता है, अच्छा तो यह है कि पानी ना पिया जाए, वो स्टैंडर्ड है, लेकिन पानी पी सकते हैं लेकिन उसको ऊपर से। और जो पानी देने वाला व्यक्ति है उसको भी समझदार होना चाहिए। जैसे ये सबसे गलत तरीका है पानी देने का, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप देंगे किसी सन्यासी को, प्रॉपर डिसाइपल को, तो निश्चित रूप से डांट पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि आप इसको ऊपर से डालेंगे तो 3-4 बूंदे आपके कुर्ते में भी गिरेगी, कपड़ों में, कपड़े सारे झूठे हो जाएंगे। इसे कभी पानी पूरा भर के नहीं देना चाहिए, थोड़ा कम, ताकि ऊपर से पानी आसानी से जा सके। एक छोटी सी बात है लेकिन बात का ध्यान रखना है। तो ये सब है, ये कॉन्शियसनेस है वास्तव में, ये सब जो बातें बताएं कॉन्शियसनेस है। प्रभुपाल ने कहा जैसे आपका आपकी चेतना होगी वैसे ही आपका वातावरण होगा। वातावरण गंदा है, दूषित है, कूड़ा फैला है, गंदगी फैली है, इसका मतलब आपकी चेतना में भी वही है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट रिफ्लेक्ट्स योर इंटरनल कॉन्शियसनेस। तो हमारा अगर मन साफ है, हम बोलते हैं हम बहुत प्योर हैं, तो बाहर तो बहुत गंदा है, ये कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, महापुरुष ने सिखाया है, महापुरुष ने खुद मंदिर मार्जन किया, सफाई पर जोर दिया, और हम लोग महापुरुष के अनुयायी हैं अगर तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब कुछ सावधानी की बातें हैं। और जो तुलसी सेवा करते हैं उनको पूरा प्रयास करें कि अशोच अवस्था में तुलसी महारानी की सेवा ना करें, नहीं तो बहुत अपराध लगेगा। और साथ में नाखून नहीं बड़े होने चाहिए, तुलसी महारानी को नाखून नहीं लगना चाहिए कभी भी, हाथ हमारे धोए हो, झूठे हाथ से नहीं कभी तुलसी माने की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना हमें। और जो पुजारी हैं उनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, वो अलग से हम चर्चा करेंगे। जब 32 सेवा अपराध के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। वैसे ये मेन बातें हैं, जैसे कि तेल लगाकर जो है पुजारी कभी नहीं जाता है ऑल्टर में, वो नहीं जा सकता। तो तेल स्नान करने से पहले लगा जाता है, स्नान करने के बाद नहीं। क्रीम भी अगर कोई लगाता है तो स्नान करने के बाद नहीं लगाना चाहिए, अगर वो ऑल्टर में जा रहा है तो। ये बहुत ध्यान रखना है। ऑल्टर में जाने से पहले अच्छा सबसे स्टैंडर्ड ये है कि खाली पेट जाए, उसके बाद ही फिर प्रसाद लें। लेकिन अगर आप प्रसाद लेके नहीं रह सकते हैं तो फिर आपको नहाना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में नियम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है कि पेट खाली होना चाहिए यज्ञ करने से पहले, पूजा करने से पहले। जैसे ब्रज भक्ति प्रभु है, अभी तक उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, यज्ञ करने के बाद ही लेंगे वो। यानी पेट भर के आ गए पूरा, फिर हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना हमें कि जब प्रसाद लेते हैं तो हमारा शरीर जो है अशौच हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, झूठा होता है ना, इसलिए। तो इन बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना है। तो तेल लगा के कभी भी जाना नहीं चाहिए ऑल्टर में, और किसी को छूना नहीं चाहिए पुजारी को। अगर आप बाहर से आते हैं तो मंदिर में आके स्नान करें, यहां आके आपको कपड़ा बदलना होगा, बाहर से नहीं कपड़ा पहन के आ सकते हैं। यहाँ के कपड़ा बदले, यही आके आपको स्नान करना है, और किसी को छूना नहीं है। कोई अगर स्विच भी छू लेते हैं तभी आपको हाथ धोना पड़ेगा, आचमन करना पड़ेगा दोबारा। मोबाइल भी छू लेते हैं फिर भी आचमन करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत एक्सेसिव, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम प्योरिटी जो है होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्योरिटी की आवश्यकता है। हमारे वहां तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं इन बातों में। अगर है एक बार रुमाल का नीचे भी गिर जाता है जमीन पे तो वो रुमाल, फिर उस रुमाल को सेवा में नहीं लगाते, फिर दूसरा रुमाल मंगाते हमारे। तो ये इन बातों का बड़ा हमें बहुत ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना। तो ये हम लोग कुछ कल पिछली बार नहीं पॉइंट्स मेंशन नहीं किए थे तो हमने कहा आज बता दें आपको। तो ये था शौचम के ऊपर। तो ये 9 गुण है ब्राह्मण के जो हमने आपको बताए। इसमें कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी तक जो बताया, नहीं तो फिर हम अगला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं।
क्योंकि ये सोने के बारे में जो आपने 6 घंटे से 6:30 घंटे सुना है, जैसे हम लोग रात को 3 बजे से दिन में सो सकते हैं क्या?
टोटल 6 घंटे, वो तो बहुत अच्छा है, सोई मत। वो तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है ना सोना, तो लेकिन उस लेवल में हम लोग नहीं है। इसलिए भगवान की गीता में कह रहे हैं आहार और निद्रा जो हमारा मॉडरेट होना चाहिए। एक बार जो आया था यूथ फोरम में, एक लड़के ने पूछा प्रश्न भक्तिदास महाराज से कि महाराज मेरे अंदर कोई मेटेरियल डिजायर्स है ही नहीं, तो महाराज ने कहा कि खाना बंद कर दो, सोना भी बंद कर दो, डोंट ईट, यू डोंट हैव एनी मेटेरियल डिजायर। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमें मॉडरेट होना पड़ेगा। रेगुलेट करना है अपने ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स को, रेगुलेट करना है। गोस्वामी क्यों की नकल नहीं कर सकते, निद्रा आहार विहार आदि विचितो, लेकिन जितना कम सोए उतना अच्छा होता है, कॉन्शियसनेस मेंटेन कर सकते हैं। सोने से फिर क्या ना, तमोगुण प्रवेश कर जाता है हमारे चेतना में, तो फिर बड़ा मुश्किल है फिर दोबारा रीइंस्टेट करना अपने आप को। अप्लाई करना मुश्किल होता है, अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास। ये कह रहे हैं कि हमारा तो स्तर नहीं है संत तुकाराम की तरह कि हम इस प्रकार सहन करें और कोई कांटे से भी मारे फिर भी हम उससे जाके माफी मांगे। तो अभ्यास करना चाहिए, जितना कर सकते हैं उतना करें, पहले कहीं से तो शुरुआत करें, है ना। और साधन भक्ति के नियमों का पालन करने से, गुरु के आदेश का पालन करने से हमारे अंदर सारे गुण आने लगते हैं। जितने अधिक हम शरणागत होते जाएंगे उतने अधिक हमारे अंदर वैश्यों के गुण आएंगे, ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है। इमिटेशन का मतलब यह है कि इमिटेशन और फॉलोइंग में अंतर क्या है पूछ रहे हैं। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, और फॉलोइंग का मतलब होता है पचना पर चलना। तो इमिटेशन का मतलब यह है कि अपने को आचार्य समझना। भक्तों ठाकुर ने बताए हैं कई प्रकार के अनर्थ जो अलग अलग असुरों का वध हुआ वृंदावन में। भक्तों ठाकुर बताते हैं ये हमारे अलग अलग अनर्थ हैं, जैसे केसी दमन, केसी राक्षस को मारा भगवान कृष्ण ने, केसी घाट जहां पर है, घोड़े के रूप में आया था, उसके मुंह में हाथ दे दिया, बिल्कुल ऐसा लगा गर्म लोहा चला गया मुंह के अंदर, फिनिश। तो वो कौन सा अनर्थ बताया भक्तों ठाकुर ने, इल्यूशन ऑफ व्हाट, इल्यूशन ऑफ आचार्य। तो थिंक वन सेल्फ आचार्य, अपने को आचार्य मान लेना, इल्यूजन में है हम अपने को आचार्य समझ रहे हैं, उसी भ्रम में बैठे हुए हैं, आचार्यों की नकल कर रहे हैं। हमने बताया था ये नकल करने का मतलब बताया था हमने कि जो हमारे स्थिति नहीं है उससे अधिक सम्मान स्वीकार कर रहे हैं, हम उससे अधिक अपना प्रचार करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इल्यूजन है ये माया। तो शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा देखने में और काफी फॉलोइंग भी हो जाएगी, लेकिन बाद में फिर माया जो है खींच लेगी। माया तो देखती है कि कब जो है व्यक्ति कृष्ण की नकल करना चाहता है, इसलिए फॉलोइंग बोला है मैं। हमारा कार्य है, शिष्य का कर्तव्य है कि अन्य लोगों को गुरु की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं प्रचार। और गुरु भी जो हमारे संप्रदाय में होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो अपने आप को कभी भी गुरु नहीं मानते, वो तो अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं और अपने शिष्यों का शिष्य मानते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब प्रभुपाद को देखे या कुछ शिष्यों को देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे दासो अस्मि, मैं आपका दास हूं। ये नहीं कि वो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की अनुभूति उनको होती है कि मुझे तो इन सबकी सेवा में लगाया गया है, मुझे इन सबको प्रभुपाद की सेवा में लगाना है, ऐसा गुरु महाराज सोचते हैं। और तपस्या क्या है, तपस्या यह है कि हालांकि आप बहुत एडवांस्ड हैं स्पिरिचुअली और आपको अधिकार भी है, लेकिन आप वही बोलते हैं जो कि आपके गुरु महाराज ने कहा है। जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद की बात यथारूप प्रस्तुत करते हैं, कोई इधर नहीं, कोई दाएं नहीं, कोई बाएं नहीं। इसको कहते हैं वाणी की तपस्या, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और उसमें कई शिष्य जो है बेचारे जो इमेच्योर्ड हैं, जो स्पिरिचुअली बहुत इमेच्योर्ड हैं, वो नहीं गुरु को समझ पा रहे, क्योंकि वो गुरु तो उनकी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। जितना आवश्यक है गुरु उतना ही दे रहे हैं हमें।
तो जैसे सोने के लिए 9:45 आ गया है और बैटरी लगा लिया और 11 बजे नींद आती है तो उसको माइनस मार्क्स में जाएगा। बैटरी लगा लिया, सुन रहे हैं प्रवचन, सुन रहे हैं
भागवतम, पढ़िए भागवतम। जब भी नींद आए तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए, नहीं क्योंकि ऐसा होता है देखा हमने ना। लेकिन भागवत का ये मर्म नहीं है, भागवत का ये तात्पर्य नहीं है, भागवत सोने के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सो जाते हैं लोग। क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या करता है, हमारे तमोगुण को बाहर निकालता है, और जब तमोगुण बाहर निकलता है तो नींद आती है।
लेकिन भागवतम पढ़ने से दूसरे जो साथ में सोया होता है उसको डिस्टर्बेंस होती है?
नहीं, पढ़ने के बाद नहीं, जोर जोर से चिल्लाना है, पढ़ने का मतलब पढ़िए, अपने छोटा लाइट जला लीजिए। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रभाव सुनिए ना। हाँ बोल, गायत्री के बारे में अभी नहीं बताएंगे, जल्दी बताएंगे तो सब जल्दी हो जाएगा सब। गायत्री के बारे में बताएंगे थोड़ा सहन करना पड़ेगा समय आने पर, अभी तो हम शुरुआत की बातें बता रहे हैं, है ना। हाँ, वही हम लोग टॉपिक ले रहे हैं अभी, भागवत विधि और पांचरात्रि की विधि, जिससे हम लोग हरिनाम और गायत्री मंत्र के बीच में जो डिफरेंस है। गायत्री मंत्र के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन क्यों गायत्री मंत्र भी लेना पड़ता है और हरिनाम दीक्षा ही पर्याप्त क्यों नहीं है, हालांकि पर्याप्त है फिर भी पर्याप्त क्यों नहीं है, तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, राधा तंत्र में लिखा है, ओ बेस्ट अमंग सन्स, यू आर कन्वर्सेंट विद द ग्रेटेस्ट ज्ञान, लुक इफ यू हियर द गोपाल मंत्र फ्रॉम श्री गुरुदेव, जो कि गायत्री मंत्र में से एक है, बिफोर हियरिंग द हरे कृष्ण महामंत्र द रिजल्ट्स ऑफ द गोपाल मंत्र विल बिकम वॉइड. देयरफॉर पर्संस ऑफ ऑल वर्णास सच एज ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास फर्स्ट हैव टू हियर दिस महामंत्र ऑफ श्री गुरुदेव बिफोर दे एक्सेप्ट इनिशिएशन इनटू द गोपाल मंत्र. यानी कि पहले हरि नाम सुनना पड़ेगा, हरि नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी गुरु से, तभी गोपाल मंत्र का लाभ मिलेगा. कोई सोचे कि मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा हरिनाम नहीं लूंगा तो गोपाल मंत्र का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार यहां पर वर्णन किया गया है. तो यहां पर एक बड़ा अच्छा प्यार बताया गया है चैतन्य चरितामृत से, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव. कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, द नेचर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र सच दैट सच व्हेन अ पर्सन चैंट्स इट ही इमीडिएटली डेवलप्स अ लविंग एक्सटैटिक रिलेशनशिप विद कृष्ण. कोई हरिनाम का उच्चारण करता है उसका स्वभाव ही यही है कि वो क्या है, कृष्ण प्रेम जागृत कर लेता है, तत्काल ही भाव जागृत हो जाता है उसका हरिनाम लेते ही. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम. अपना छूट सकता है कि हम लोग तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई भाव जागृत नहीं हुआ, कृष्ण प्रेम का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है, आभास भी नहीं हो रहा है, भाव तो दूर की बात. तो वो इसलिए है क्योंकि अपराध हमें रोक रहे हैं. शुद्ध नाम कृष्ण प्रेम देता है, शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और क्योंकि शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमें पांचरात्रि की विधि का सहारा लेना पड़ता है. पांचरात्रि विधि जिसमें हमें गायत्री मंत्र प्राप्त होता है. तो ये गायत्री मंत्र जो है हमें कैसे लाभ पहुंचाता है ये भी कविराज गोस्वामी बता रहे हैं. कृष्ण मंत्र होते होबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण. तो कृष्ण मंत्र से क्या होता है, संसार मोचन, आपको लिबरेशन मिलता है. गायत्री मंत्र से क्या मिलता है आपको, इस मेटीरियल यूनिवर्स से लिबरेशन मिल जाता है, आप वैकुंठ की तरफ प्रवेश करते हैं. लेकिन पवित्र नाम जो श्री कृष्ण का है वो आपको भगवान के श्री चरण कमलों तक ले जाता है. ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण. तो भागवत दीक्षा पांचरात्रि की दीक्षा, भागवत विधि और पांचरात्रि की विधि, तो ये दो विधि है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इन दोनों की आवश्यकता क्यों है. जबकि कलयुग में हमने बताया युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, यही हमने सुना है सबसे. तो यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है, श्रील प्रभुपाद हार्डली मेंशंस मंत्र दीक्षा इन हिज बुक्स एंड वन वंडर्स इफ इट इवन इफ इट इज नेसेसरी. प्रभुपाद ने बहुत कम बताया मंत्र दीक्षा के बारे में, प्रभुपाद ज्यादा हरिनाम पर ही जोर दे रहे हैं. क्या वास्तव में आवश्यक है? Everywhere we find Prabhupada stresses the importance of chanting Hare Krishna to attain all success. This initiation is considered a very serious step. The vows are taken and the understanding is that the sadhak has begun his spiritual life. It was my impression that a second initiation was considered necessary only for those in the temple who are required to serve the deities. Srila Prabhupada emphasized Harinam, but is this simply another example Prabhupada giving us very basics intending for us to learn more as we become mature? Reluctance to receive mantra diksha from someone is likely based primarily on one's reservation about being considered someone's disciple, especially if one has already received the holy name and jap mala from a guru who passed on before he could give his disciple mantra diksha. Otherwise, why would one not want to take advantage of the principal mantra of sampradaya? While one may put forth various reasons with emphasis on the holy name's efficacy and its relationship to the Bhagavat Rag Marg as opposed to mantra's relationship with Archan and the Panchratri Marg, this reasoning does not add up to justification for foregoing mantra diksha. The principal diksha mantras of our sampradaya are the 18 syllable Krishna mantra and the Gopal mantra, Kam Gayatri and Gopal Gayatri. This mantra, Kaviraj Goswami says, Krishna mantra hoite hove sansar mochan, Krishna naam hoite paave Krishna charan. By chanting the Krishna mantra, one will attain liberation, and by chanting Krishna naam, one will attain the feet of Krishna. In this way, Krishnadas Kaviraj Goswami distinguishes between the effects of chanting Krishna mantra and Krishna naam. Krishna mantra brings one to liberation. This devotional liberation is called Swarup Siddhi. So here liberation ki baat ki gayi kya hai? Swarup Siddhi. Not ordinary liberation. जब हमारे इसमें मुक्ति की बात की जाती है या स्वरूप जब भी संसार मोचन कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या है? स्वरूप सिद्धि तक आपको ये ले जाएगा. लेकिन जहां तक हरि नाम की बात है वो क्या करता है? दिस डिवोशनल लिबरेशन कॉल्ड स्वरूप सिद्धि इन वन विच रियलाइजेस स्वरूप एंड टेक्स बर्थ इन गोकुल कृष्णा मैनिफेस्ट पास्ट टाइम हैविंग अटेन्ड स्टेज मंत्रा रिटायर्स. तो आपको ये क्या करेगा? स्वरूप सिद्धि दिला के आपको जन्म दिला देगा गोकुल में. गोकुल में आपका जन्म हो जाएगा, नित्य लीलाओं में आपका जन्म हो जाएगा. लेकिन उसके बाद जो मंत्र है वो रिटायर कर देगा, उसका कार्य पूरा हुआ. फिर हरिनाम क्या करता है? फिर हरिनाम क्या करता है? एंड कृष्ण नाम देन टेक्स अस टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा इन द फाइनल स्टेज ऑफ वास्तु सिद्धि इन विच वन एंटर्स द अनमैनिफेस्ट लीला ऑफ गोलोक. तो गोला गोलोक अप्रकट लीला है, अप्रकट लीला है जो नहीं दिखाई पड़ती है, उन लीलाओं में प्रवेश करते हैं. ये हरिनाम है वहां ले जाता है. तो प्रकट लीला में कौन सी लीला ले आता है? मंत्र ले आता है स्वरूप सिद्धि प्राप्त करा के. लेकिन वहां से अगर गोलोक जाना है और फाइनल रिफाइनमेंट होनी है, वास्तु सिद्धि जिसको कहते हैं, वो हरिनाम के माध्यम से होगा. भक्ति संदर जी गोस्वामी सेस दैट द टाइम ऑफ इनिशिएशन गुरु इंपार्ट्स दीक्षा मंत्र एंड एन एक्सप्लेनेशन what is contained within the mantra. This includes knowledge of Krishna's form. तो इस मंत्र में क्या है? कृष्ण का रूप, स्वरूप, उनका स्वभाव और शिष्य का संबंध कृष्ण के साथ. दिव्यम ज्ञानम ही अत्र श्रीमती मंत्रे भागवत स्वरूप ज्ञानम तेन भागवत संबंध विशेष ज्ञानम च. Thus the knowledge of one's relationship with Krishna is within the Diksha mantra. कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है वो दीक्षा मंत्र में दिया गया है. And the guru will instruct his disciple as to the efficacy of this mantra. तो गुरु बताते हैं मंत्र का क्या प्रभाव है. इट लीड्स टू द लिबरेटर स्टेज ऑफ स्वरूप सिद्धि. स्वरूप सिद्धि तक आपको ले जाएगा मंत्र. एंड व्हाट इज स्वरूप सिद्धि? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति, जैसे कि भागवत में दिया गया. सो द दीक्षा मंत्र इज नॉट ओनली कंसर्न विद द अर्चन. दीक्षा का मंत्र केवल अर्चन पद्धति से ही नहीं है. Although it is necessary for अर्चन, हालांकि अर्चन के लिए आवश्यक है. And for the most part, all devotees need to be involved in archan in order to be purified and take full advantage of the holy name. लेकिन और आगे अगर बढ़ना है तो हरि नाम का पूरा में लाभ भी उठाना है. From archan one comes to the platform of bhajan. तो अर्चन करने से क्या होगा? शुद्धिकरण होगी. और अर्चन कर करके हमें क्या होगा? इस पांच रात्रि की विधि के पालन करने से हम लोग भजन करने के स्तर पर पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग शुद्ध नाम भी ले पाएंगे. While Sankirtan of the holy name pervades both stages, purifying one's heart in the stage of Archan and delivering one to the lotus feet of Krishna in the stage of Bhajan. Theoretically speaking, everything is within Krishna Nam and Krishna Mantra may not be necessary. But practically speaking, sadhaks require Krishna Mantra to take the advantage of Krishna Nam. Krishna Mantra is dependent on Krishna Nam in the sense that it consists of names of Krishna arranged in particular formula. So mantra mein kya hai? Krishna ke naam hi hai. लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है. विद द वेरी प्रेजेंस ऑफ कृष्ण नाम इन द मंत्र इज व्हाट इट इज रेवलेटरी पावर. तो मंत्र में क्योंकि कृष्ण का नाम है इस कारण से उन मंत्रों में शक्ति है. टेक ऑल द हेल्प यू कैन गेट. दिस वॉज ओपिनियन ऑफ प्रभुपाद. ही राइट्स द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज सो पावरफुल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑफिशियल इनिशिएशन. But if one is initiated and engaged in Panchratri Vidhi, his Krishna consciousness will awaken very soon and his identification with the material world will be vanquished. The Guru that is most important to us is one who helps us the most, be he the Nam Guru or the Mantra Guru. Of course, in almost all the cases, this Guru is the same. But under certain circumstances, it may be two different Gurus. Kai baar aap Harinam kisi se lenge, गुरु अप्रकट हो गए तो आपको मंत्र किसी और से लेना पड़ेगा. तो उस केस में क्या हो गया? नाम गुरु आपके अलग हो गए और मंत्र गुरु आपके अलग हो गए. बिकॉज द नाम गुरु हैज ऑलरेडी डिपार्टेड, वन शुड फाइंड अ गुरु इन हुम वन फील्स द नाम गुरु मोस्ट प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंटेड एंड डिस्कस ओपनली विथ हिम. मतलब ऐसे वैष्णव के पास आपको जाना पड़ेगा जिसमें आप अपने नाम गुरु को क्या देख सकते हो? देख सकते हो. The disciple sentiments for his now guru should be honored appropriately. ये बहुत आवश्यक है। ये किसने बताया है? भक्तों ठाकुर बता रहे हैं, हरिनाम चिंतामणि। क्वेश्चन, आई हैव हर्ड दैट वन इज एन इटर्नल कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर हु फर्स्ट इनिशिएट्स इन टू द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। डज ही हैव सिमिलर कनेक्शन विद द मंत्र गुरु? मतलब नाम गुरु से ना हरिनाम लिया जिनसे, उनसे तो संबंध है, लेकिन वही संबंध क्या मंत्र गुरु के साथ भी रहता है? तो उसका उत्तर क्या है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। Some devotees who took Harinam initiation from Srila Prabhupada, but later took Gayatri Mantra initiation from one of his disciples. Prabhupada ji se Harinam liya, lekin mantra liya Prabhupada ji ke shishya se. Prabhupada ji ke shishyon se liya. Prabhupada ji chale gaye Harinam deke, Gayatri Mantra nahi le paaye. Can you explain the distinction between two initiations and how a disciple should view his relationship with two different spiritual masters? तो दोनों ही गुरु हैं, प्रभुपाद से आपने हरि नाम लिया है और आपसे मंत्र लिया है, तो क्या किया जाए? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द नाम गुरु, और द गुरु इनिशिएट्स इनटू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, एंड सेकंड टू द गुरु हु गिव्स इनिशिएशन टू द गायत्री मंत्र। द दीक्षा गुरु इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी शोन रेस्पेक्ट एंड देन ऑल अदर डिसाइपल्स ऑफ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। फर्स्ट ऑनर मस्ट बी शोन टू प्रभुपाद who's a Naam Guru, Guru of Guru. Second honor will go to the Diksha Guru and then to the rest, accommodating all. They should all be recognized according to their status. Who knows who is Prabhupada Ji's Guru Bhai? This answer we have told. Prabhupada Ji's Guru Bhai was Sridhar Maharaj, so he answered. They will be Prabhupada Ji's Shishya Maharaj, because they have given him Hari Naam. So that's why the Naam which they are taking, जो कई बार पहले इनिशिएशन को लोग इतना सीरियस नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं, वैष्णव बता रहे हैं कि हरिनाम इनिशिएशन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और उसका हमने कारण भी बताया आपको, क्योंकि हरिनाम ही आपको कहां ले जाने वाला है? अप्रकट लीलाओं में ले जाने वाला है। जीव गोस्वामी हैज रिटन दैट द नेम ऑफ कृष्णा इज द प्रिंसिपल थिंग इन द गायत्री मंत्र। विद इन द मंत्र देयर आर ऑल्सो सो मेनी अदर वर्ड्स, बट द नेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ द नेम ऑफ कृष्णा इज टेकन अवे and replaced with some other name, the whole thing will be rotten. मान लीजिए गायत्री मंत्र से नाम हटाने कृष्ण का, तो गायत्री मंत्र क्या है? वो निरर्थक हो जाएगा। This is the decision of Srila Jiva Goswami. Holy name of Krishna is all in all. Holy name of Krishna is there in Gayatri Mantra, and so many other words are couched there. But if Krishna's name is taken away and replaced with the name of Shiva, then the whole thing will go to Shiva. अब गायत्री मंत्र में अगर शिवजी का नाम आ जाता है तो वो शिवजी के पास चला जाएगा, कृष्ण के पास नहीं जाएगा। द होली नेम इज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर। श्रील रूप गोस्वामी सेज वन नी नॉट गो अंडर गो ऑल द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस और फॉलो द सिक्स रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज मेंशन इन द वेदास फॉर पायस लाइफ। वन नी नॉट इवन टेक इनिशिएशन इन द गायत्री मंत्र। इफ वन सिंपली चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण विदाउट ऑफेंस, एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुल। The holy name of Krishna is the most important consideration. Gayatri mantra may not even be necessary. We accept the mantra only to help the naam of bhajan. So, mantra kyun swikar karte hain? Isko aur achhi tarah se iska uchcharan kar sake. Kai baar log gayatri mantra lene ke baad jab karna band kar dete hain. Iska matlab gayatri mantra ka bhi laabh nahi utha rahe. गायत्री मंत्र का लाभ उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में हरि मंत्र का उद्देश्य क्या है कि आपका जो हरिनाम जो है और अच्छी तरह से आप ले पाए। तो यानी कि जो पांचरात्रि विधि है बेसिकली भागवत विधि को सपोर्ट करता है। पांचरात्रि विधि में आता है अर्चन पूजन, डीटी वर्शिप जिसको कहते हैं, यज्ञ। जैसे हमने अभी बताया यज्ञ जब हो रहा था अंदर संकीर्तन चल रहा था, यज्ञ होता है तो आग लगती है, आग लगती है, लोग दूर दूर से भागे भागे आते हैं। जब दूर दूर से लोग भागे भागे आते हैं आग को देखकर, तो फिर उनको संकीर्तन में शामिल किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जो पांचरात्रि की विधि है वो भागवत विधि को शेप देता है, सपोर्ट करता है। एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, और बार बार प्रभुपाद जब प्रवचन दे रहे थे माइक नीचे गिर रहा था ऐसे, तो प्रभुपाद कभी ऊपर करते कभी ऐसे करते, बहुत परेशान हो गए प्रभुपाद की, हो क्या रहा है? और शिष्य भी कुछ कर नहीं पा रहा है पास में जो खड़ा है। प्रभुपाद ने कहा अपना जनेऊ लाओ। प्रभुपाद ने उनका जनेऊ उतरवाया और प्रभुपाद ने उस जनेऊ से माइक को बांधा, फिर प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। फिर वो शिष्य समझ नहीं पाया कि प्रभुपाद ने मेरा जनेऊ उतरवा दिया। खैर प्रभुपाद कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते ऐसा। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मुझे समझ में नहीं आया, आपने मेरा सेंचुरी में उतरवा दिया। प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत विधि पांच रात्रि विधि सपोर्ट दी भागवत विधि। सुन रहे उस सिखाने के लिए प्रभुपाद ने इस तरह से किया, ये लो वापस लो अपना जने पहन लो। आचार्य लोग देखिए, इसलिए आचार्यों की आवश्यकता है क्योंकि उन लोग उनकी दक्षता है, वो शास्त्रों के मर्मों को जानते हैं। इसलिए आचार्यों के निकट रहकर अगर शास्त्रों को समझा जाए उनकी सेवा करते हुए, तब ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। नहीं तो कंफ्यूज करने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में। द मंत्र हेल्प्स अस टू डू अवे विद द अपराध ऑफेंसेस एंड आभास और हेजी कंसेप्शंस इन आवर भजन। तो मंत्र क्या करेगा, हमें अपराधों से छुटकारा दिलाता है। मंत्र कम्स टू हेल्प अस ओनली सो फार एनी एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ लार्जर एंड स्मॉल सर्कल्स। द होली नेम ऑफ कृष्णा इज अ लार्जर सर्कल, तो दो सर्कल बनाया जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट। द मंत्र सर्कल इज स्मॉलर सर्कल विद इन द लार्जर सर्कल। तो मंत्र का जो सर्कल है वो छोटा है और जो नाम का जो सर्कल है वो बड़ा है। इसमें एक डायग्राम दिया वो दिखाना चाहते थे हम। खैर तो इट एक्सटेंड फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट। द मंत्र सर्कल इज स्मॉलर सर्कल विद इन द लार्जर सर्कल। मंत्र कैन नॉट रीच टू द लोएस्ट पॉइंट। द होली नेम कैन एक्सटेंड इट्स डाउन टू द लोएस्ट पोजिशन। मंत्र गिव्स अस एंट्रेंस इनटू द लिबरेशन एंड द नेम कैरीज अस फर्दर। तो मंत्र हमें प्रवेश कराता है और हरिनाम क्या करता है, उसको और आगे ले जाता है। दिस इज द नेचर ऑफ आवर कनेक्शन विद द मंत्र एंड द नेम। द नेम एक्सटेंड्स टू द लोएस्ट पोजिशन, यानी कि नेम जो है हरिनाम इतना नीचे जाता है कि यहां तक चंडाल और यावन भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। और एवरी वन कैन रिसीव द नेम बट एवरी वन इज नॉट एलिजिबल फॉर द गायत्री मंत्र। देखिए कितनी बड़ी बात है, हरिनाम नीचे जाकर और सबसे ऊपर ले जाता है आपको नहीं, और लेकिन जो मंत्र है वो सबके लिए नहीं है लेकिन फिर भी सबसे ऊपर नहीं ले जाता वो। लेकिन मंत्र और नाम में अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि मंत्र में भी नाम है। एवरी वन कैन रिसीव द नेम बट एवरी वन इज नॉट एलिजिबल फॉर द गायत्री मंत्र। द नेम एक्सटेंड्स टू द लोएस्ट पोजिशन टू द चंडाल्स एंड द यावन्स आल्सो। ओनली आफ्टर वन इज रीच अ डेवलप्ड स्टेज कैन द मंत्र बी कन्फर्ड अपॉन हिम। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन के बाद, इसलिए हरिनाम दीक्षा से पहले भी हमारी संस्था में और जीव गोस्वामी ने भी बताया शॉर्ट संदर्भ में कि गुरु और शिष्य को एक साल बताना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने एक साल का समय दिया है। और गायत्री मंत्र के लिए और कड़क नियम है, तो गुरु फिर परखते हैं कि शिष्य अब गायत्री मंत्र के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि मंत्र के लिए कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन। बट एवरी वन इज नॉट एलिजिबल फॉर गायत्री मंत्र। ओनली आफ्टर इज रीच द डेवलप स्टेज कैन द मंत्र बी कन्फर्ड अपॉन हिम एंड मंत्र ज्यूरिस्डिक्शन विल बी फिनिश्ड व्हेन लिबरेशन इज अटेन्ड। इन द चैतन्य चरितामृत स्टेटेड, जैसे हमने पहले बताया, कृष्ण गायत्री मंत्र लिबरेट्स वन रिपीटेड बर्थ एंड डेथ इन द वर्ल्ड। द होली नेम ऑफ कृष्णा गिव्स वन शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। सो यू मस्ट सिंपली चैंट नेम स्पॉन्टेनियसली। वी शुड नॉट चैंट विद द मेंटालिटी दैट आई वॉन्ट दिस, दैट विल एनकरेज गुड विल इन अस। सो बिकॉज द फंक्शन ऑफ द मंत्र इज लिमिटेड बट द नेम इज ऑल इंपॉर्टेंट। द नाम गुरु विल बी ऑनर्ड फर्स्ट एंड द नेक्स्ट द मंत्र गुरु एंड देन द अदर वैष्णव्स। तो ये बड़ा सावधान रहना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। इवन विदाउट द रेसिटेशन ऑफ काम गायत्री द चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इज सफिशियंट टू एलिवेट वन ऑन टू द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। खैर ये तो वही बातें हैं। और कुछ कोर्ट्स हैं जिसमें यह भी बताया कि हरिदास ठाकुर हाउ ही इनिशिएटेड माया। आफ्टर स्पीकिंग इन दिस वे माया वर्शिप द लोटस फीट ऑफ हरिदास ठाकुर हु इनिशिएटेड हर बाय सेइंग जस्ट परफॉर्म द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। नाउ इवन माया वांटेड टू बी फेवर्ड बाय हरिदास ठाकुर, देयरफॉर हरिदास ठाकुर फॉर्मली इनिशिएटेड हर बाय आस्किंग हर टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। तो भागवत विधि और पांच रात्रि की विधि, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब उन्होंने गौड़े मठ की स्थापना की थी, उन्होंने अपने जो लोगों में ऑफिशियल लोगों में उन्होंने मृदंग करताल तो दिखाई, उन्होंने रेलवे लाइन भी दिखाया, रेलवे की पटरी दिखाई दो लाइन। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन भागवत विधि है, दूसरी लाइन है पांच रात्रि की विधि। यानी डीटी वर्षी भी चल रहा है, साथ साथ क्या चलना चाहिए, भागवत कथा भी चलनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के पदचिन्हों पर चलते हुए उसको फिर से एस्टैब्लिश किया और ऑपुलेंट वे में और ज्यादा सुचारू रूप में वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो इसलिए प्राकृत भक्त जो आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करते हैं या मंत्र दीक्षा लेते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि किसी ना किसी तरह की वो डीटी वर्शिप में इन्वॉल्व हो, एंगेज करें अपने आप को, ये बहुत जरूरी है। तो और साथ में ये भी ध्यान रहे, जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं उनके शिक्षा गुरु हुए हैं जरूर, लेकिन साथ में उनके दीक्षा गुरु भी हुए हैं, उन सबके दीक्षा गुरु हुए हैं। नाउ आई शैल चैंट वन मंत्रा विच इज नॉट ओनली ट्रांसेंडेंटल प्योर ऑस्पिशियस बट इज द बेस्ट प्रेयर फॉर एनी वन हुज एस्पायरिंग टू अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। व्हेन आई चैंट दिस मंत्रा प्लीज हियर इट केयरफुली एंड अटेंटिवली। लॉर्ड शिवा वॉलंटरली केम टू बेनेडिक्ट द सन्स ऑफ द किंग एज वेल एज डू समथिंग बेनिफिशियल फॉर हिम। ध्यान से सुनेगा ये बात, ही पर्सनली चैंटेड द मंत्रा सो द मंत्रा वुड बी मोर पावरफुल एंड ही एडवाइस that the mantra be chanted by the king's son Rajaputras. When a mantra is chanted by a great devotee, the mantra becomes more powerful. Although the Hare Krishna Mahamantra is powerful in itself, the disciple upon initiation receives a mantra from a spiritual master, for when the mantra is chanted by the spiritual master, it becomes more powerful. Srimad Bhagavatam Prabhupada, 4th canto 24th chapter text 31-32 ke purport mein Prabhupada ne diya hai. Prachetaon ko Shiv ji ne bola tha nahi, प्रचेता थे ना, तो प्रचेताओं को सुनाया था और उनको कहा कि आप क्या करो, भगवान की आराधना करो, आप लोग उनकी प्रार्थना करो। तो जब शिवजी ने सुनाया तो फिर क्या हुआ, और उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई, है ना। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र मस्ट बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी, बोलते कि नहीं। इसलिए जब गुरु के द्वारा हरिनाम सुना जाता है और वो माला करके हमें जो पकड़ाते हैं तो और आध्यात्मिक शक्ति में प्राप्त होती है हरिनाम लेने में। इसलिए जी गोस्वामी विश्वनाथ जी ठाकुर इन सब का मत है कि हरिनाम के लिए भी दीक्षा लेना चाहिए हमें। बिना दीक्षा के हरिनाम हमें नामाभास के स्तर पर पहुंचा सकता है, हम पहुंच सकते हैं नामाभास के स्तर तक पहुंच सकते हैं, नाम का आभास हो जाएगा आपको। लेकिन जहां तक शुद्ध नाम की बात है और कृष्ण प्रेम की बात है, और जैसे कि हमने बताया कि अप्रकट लीलाओं में जो प्रवेश कराने की बात है, वो तभी होगा जब किसी गुरु और शुद्ध भक्ति कृपा हो, या शुद्ध भक्ति कृपा हो तो गुरु की कृपा से हो सकता है। जब गुरु के द्वारा वो हरिनाम प्राप्त होता है दीक्षा के रूप में तो उसका पूरा लाभ मिलता है, पूरा लाभ मिलता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है समझने के लिए। पांचरात्रि की विधि में बेसिकली क्या है, देखिए पांचरात्रि की विधि में फॉर्मल डीटी वर्शिप है, जिसमें क्या है कि कई प्रकार की औपचारिकताएं होती है, रेगुलेटेड डीटी वर्शिप। प्रभुपाद ने कहा पिक्चर में, तो पिक्चर ऑफ द लॉर्ड जो पेंटिंग्स देखते हैं आप, पोस्टर देखते हैं, भगवान का चित्र देखते हैं, उसमें और डीटी में कोई भेद नहीं है। अगर उसमें और डीटी में कोई भेद नहीं तो फिर हम डीटी वर्शिप क्यों करते हैं, फिर पिक्चर ही रख ले हम। तो भेद यह है कि डीटी जो है बेसिकली आचार्यों के द्वारा स्थापित होता है और उसमें फॉर्मल कमिटमेंट्स होते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा लाइक, तो इसलिए उसको कहते हैं पांच रात्रि की विधि। तो उस विधि में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया, आचार्य कमिटमेंट दे देते हैं जब इंस्टॉलेशन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसी अनुसार फिर चलना पड़ता है। लेकिन जहां तक चित्र की बात है उसमें अपने आप सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पिक्चर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कई बार कमरों में भी पिक्चर्स लगे रहते हैं और हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमारे पांव जो है भगवान के चित्र के सामने ना जाएं सोते वक्त, और चित्र को हम लोग जो है उल्टा ना रखें, उसमें धूल जमी रहती है। इसलिए हमने पहले बताया था कि डीटी वर्शिप करने से पहले हम ऑल्टर्स में अपने पिक्चर रखना शुरू करें, पहले उसमें जो धूल जमी है उसको निकालना शुरू करें और उसमें फूल अर्पित करें, उनको भोग लगाएं और उन्हीं की आरती करने का पहले प्रयास करना शुरू करें। तो शुरुआत हम लोगों को बेसिक लेवल से करना शुरू करें, जब उसमें हम लोग क्या हो जाएंगे, स्टडी हो जाएंगे, तब हम बोल सकते हैं हाँ अब हम थोड़ा सा डीटी वर्शिप भी कर लें। सीधे हम कभी जंप लगाएंगे, सीधे हम बोलेंगे हम राधा पार्षद जी की सीधा सेवा करेंगे। इसलिए जब वास्तव में ट्रेनिंग होती है डीटी वर्शिप की पुजारियों की, तो सबसे पहले उनको डीटी के बर्तन धुलाए जाते हैं, उनको सफाई सिखाई जाती है, पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है, इसके लिए ट्रेन किया जाता है। प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग करवाने के लिए कहते हैं, प्रभुपाद जी हमारे बैठे हैं टेंपल हॉल में, प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग कर सकते हैं, जिन्होंने हरिनाम दीक्षा ली वो भी कर सकते हैं प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग। تو پروپاد جی ڈریسنگ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ڈی ٹی کچن میں جا کر اگر پجاری آپ کو پرمٹ کریں وہاں ہیڈ پجاری, تو وہاں جا کے ڈی ٹی اس کے برتن دھو سکتے ہیں, ڈی ٹی کچن صاف کر سکتے ہیں. تو یہ سب تو پہلے سے ہی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پورا تیار رہنا ہوگا. اس کے لیے تو کئی پرکار کے پانچ راتری کے منتر ہوتے ہیں, اس کو دھیان منتر کہتے ہیں, بیج منتر کہتے ہیں, مول منتر کہتے ہیں, استوتی استوتر, پرنام منتر, گایتری منتر. تو یہ بیسیکلی سارے پانچ راتری کی ودھی کے منتر ہیں جو جس کے بیسس پہ ڈی ٹی ورشپ کیا جاتا ہے. اب اس میں کوئی پرشن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی تک بتایا آپ کو, یا کوئی کنفیوژن ہے کسی پرکار کا.
جو ہمارے اوریجنل گرو مہاراج ہیں, ہی ول بی مینیفیسٹنگ ہز جسٹ ان دا سیکنڈ گرو, اور ہی ول بی گیونگ اس انسٹرکشنز وایا دا سیکنڈ گرو.
نہیں, ہمیں ان کا پرشن یہ ہے کہ ویستا میں جب ہم نام گرو سے دیکشا لے رہے ہیں اور مالی نام گرو اپرکٹ ہو گئے اور منتر ہمیں کسی اور سے لینا پڑ گیا, تو ایسا ہے کہ وہ منتر گرو کے مادھیم سے وہی سکشائیں ہمیں پراپت ہوں گی. تو اس لیے یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے, اگر واسطہ ہمارا نام گرو سے سمبندھ رہا ہے اور ٹھیک سمبندھ رہا ہے, ان کی سیوا کرتے رہے ہیں, تو نشچت روپ سے ہم اسی ویشنو کی تلاش کریں گے جو ہمارے نام گرو کے بھاو ہیں. تو ان سے منتر جب لیں گے تو پھر اس منتر گرو کا سنگ کرنے کا پورا لابھ ملے گا, اس گرو کو فالو کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی اور ان سے منتر لینے کا پورا ہمیں لابھ ملے گا, کیونکہ ہمارا نام گرو سے سمبندھ رہا ہے. اور نام گرو سے پوچھ بھی سکتے ہیں, اگر وہ جانے سے پہلے کہہ جاتے ہیں کہ آپ انہیں سے دیکشا لو. ٹھاکر بھکتی ونود نے اپنے سپوتر بملا پرشاد کو بچپن میں ہری نام دے دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جاؤ بابا جی مہاراج سے دیکشا لو, تو ان سے جا کے دیکھا لے. اس لیے ان کو انہوں نے دیکھا گرو مانا, بملا بھکتی ونود ٹھاکر کے کہنے پر. تو گرو اگر کہتے ہیں تب ایسا کرنا ہے. گرو کے رہتے ہوئے, نام گرو کے رہتے ہوئے اگر منتر آپ لیتے ہیں کسی اور سے, تو اس کی پرشنسا نہیں کی گئی ہے, اس کو اپرادھ کہا گیا ہے اگر اس میں نام گرو کی انومتی نہیں ہے. اور یہ ہم نے پہلے بہت بار بتایا بھی ہوا ہے, جب گداھر پنڈت گئے تھے چیتنے مہاپربھو کے پاس, اور انہوں نے مہاپربھو سے کہا کہ مہاپربھو میں نے جو منتر ہے وہ میں نے کسی کو بتا دیا, گایتری منتر جو ملا تھا مجھے پنڈریک ودیا ندھی اپنے گرو مہاراج سے, گرودیو سے, وہ میں نے کسی کو بتا دیا, اس لیے اب کیا ہے اس کا اتنا افیکٹ نہیں رہا, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دوبارہ دیکھا دے دیں, ری انیشیٹ کر دیں. تو آپ دیکھیے مہاپرو کیا کریں, چیتنے بھاگوت انتیہ کھنڈ ٹیکسٹ 22 and 26, ون ڈے شیلا گداگر پنڈت ریویل ٹو دا لارڈ his reason for wanting reinitiation. He said, I have revealed my East Mantra, the mantra of once worshipable deity that I received from my guru to an undeserving person, and since then my mind is disturbed. My Lord, you kindly reinitiate me with the same East Mantra, then my mind will become jubilant again. So Gadadhar Pandit said, Mahaprabhu said, that you can reinitiate me. Mahaprabhu can give me. Mahaprabhu Krishna is. مہاپرو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, ان کو تھوڑا برادر کوئی لگے گا, وہ تو پورے سنسار کو دیکھا دے رہے ہیں. تو مہاپرو لیکن کیا بولتے ہیں, تو لارڈ ریپلائڈ, بی ویری کیئرفل, مہاپرو کہہ رہے ہیں دیٹ یو ڈو ناٹ کمٹ اینی آفینسز ٹو یور گرو, دا ون ہو انسٹرکٹیڈ یو آن دا ایسٹ منترا, ایز لانگ ایز یور منتر گرو از پرزینٹ یو کی ناٹ گو ایلس ویئر اور ایون کم ٹو می, دس وڈ جیپورڈائز the spiritual life of both you and me. تمہارا اسپرچل لائف بھی خراب ہوگا, میرا بھی اسپرچل لائف خراب ہوگا اگر میں تمہیں دیکھا دیتا ہوں. جاؤ جس سے دیکھا لیا اسی سے دیکھا لو. تو یہ تو ان کے لیے بتایا جن سے منتر دیکھا لے لی. تو یہ شسٹاچار بھی ہے, یہ شسٹاچار بھی ہے. تو اس لیے جب تک نام گرو کی آگیا نہ ہو, انومتی نہ ہو, ان کے جیوت رہتے ہوئے تو یہ کر ہی نہیں سکتے ہم. اور دوسرا, اگر وہ چلے جاتے ہیں, انہوں نے پہلے سے اگر مارگدرشن دیا ہوا ہے تو اس انوسار چلا جائے, اور مارگدرشن نہیں ملا ہے کسی لیا جائے, تو پھر ہم انہی گرو سے لینے کا پریاس کریں जिनके भाव, जिनकी भावनाएं हमारे नाम गुरु से मिलती जुलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम गुरु का मतलब हरिनाम, मंत्र गुरु मतलब गायत्री मंत्र, ठीक है। तो ये था बेसिकली भागवत विधि और पांच श्राद्ध की विधि के बारे में। आज के लिए इतना पर्याप्त है, समय काफी हो गया।
But sometimes our Gurudev tells us that since we are into teaching, we should not do deity worship. So then what should we do?
हमें बताया जाता है कि जो प्राकृत भक्त हैं उनको डीटी वर्शिप करना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन कई बार हमें तो गुरु महाराज से आदेश मिलता है कि हम लोग प्रचार में ज्यादा ध्यान दें, डीटी वर्शिप इतना नहीं। जो मंदिर के बिल्कुल करीब रहते हैं, पास में रहते हैं, उनको मंदिर में आके सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद ने कहा कि जो दूर रहते हैं मंदिर से वो लोग डीटी वर्शिप करें, जो मंदिर नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो मंदिर के करीब रहते हैं उनको मंदिर में निश्चित रूप से आना चाहिए, गुरु के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं उनका दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दूर रहता है कोई, बहुत दूर रहता है यहाँ से, जैसे गुड़गांव में रहते हैं कोई, उनके लिए रोज आना मुश्किल है, या सोनक ऋषि प्रभु वे बिहार में रहते हैं फिर भी वो यहाँ आकर डीटी वर्शिप करते हैं, ऑल्टर में आते हैं, हर दूसरे दिन में शाम को संध्या आरती करते हैं वो, बल्कि उनके लिए तो वहीं पे करे तो भी अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पर आते हैं, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन तो अच्छा यही है कि जो दूर रहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो पास रहते हैं उनको मंदिर में आके सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी हैं, अपने घर में भी ड्यूटी रख लिया हमने तो फिर हम मंदिर जाएंगे नहीं, फिर ऐसे बहुत सारे मंदिर बन जाएंगे गड़ी में फिर, है ना, तो वो ठीक नहीं है। और दूसरा ये बात है गुरु की आज्ञा, अगर गुरु की आज्ञा है कि आप घर के सामने रहकर, मंदिर के सामने रहकर भी ड्यूटी रखें घर पे, तो रखिए जरूर। ये तो सारा निर्भर करता है गुरु ने आपको क्या आदेश दिया, सरल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर गुरु कहते हैं रखें तो रखें, और बोलते हैं गुरु नहीं रखो तो नहीं रखें, ये बस सिंपल सा। हमने यही बोला, हमने यही बोला कि गुरु जैसा कहते हैं वैसा करें। नहीं नहीं, बाहर निकाल के ठीक कर सकते हैं वो, तो जब के समय कहा गया है, जब जब करते हैं तो माला दिखा के जब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया हरिभक्ति लास में, जो और अन्य जो जैसे यक्ष वगैरह है वो उस मंत्र का पावर ले जाते हैं जो आप जब कर रहे हैं, तो ये जो मंत्र जो दिया जाता है उसको कभी दिखा के नहीं किया जाता है, खासकर जो जब करते हैं संख्या पूर्वक जिसको कहते हैं, तो उसको ढक के जब करते हैं, अगर बीट बैग नहीं है तो कपड़े से ढक के जब करते हैं। जहाँ तक उलझने की बात है, वो तो बाहर जब निकालेंगे तो उसमें जब थोड़ा करेंगे, वो तो उसको तो सुलझाएंगे ना, उसको चैंटिंग तो नहीं कर रहे हम। हाँ, तो उसको निकाल के सुलझा लीजिए, हाँ उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूछ 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 बोलिए।
जैसे भी आपने बताया मुझे गदर पंडित का महापुरुष का, जिसमें महापुरुष बोल रहे हैं कि मुझे भी अपराध लगेगा तो नहीं करेगा।
हाँ,
अभी हम जैसे अभी हम देखते हैं कई बार कुछ वैष्णव आ जाए जिसको हम एडवांस भी स्वीकार करते हैं, वो ऐसा देते हैं दीक्षा, तो हमें कैसे समझना चाहिए इस क्वेश्चन?
हमें कुछ नहीं समझना चाहिए, हमें इतना ही समझना चाहिए जो यहाँ बताया गया है। प्रश्न का है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आज की परिस्थिति में ऐसा भी हो रहा है कि देख रहे हैं कि कई और गुरु हैं वो दीक्षा दे रहे हैं दोबारा, तो ये ठीक है कि नहीं, है ना, ये प्रश्न है ना आपका। हमें कुछ नहीं समझना चाहिए, हमें दोबारा दीक्षा नहीं लेनी है, बस यही समझना चाहिए। वो दे रहे या नहीं दे रहे वो अलग बात है, ये तो शास्त्र की बात कर रहे हैं ना हम। अब आपको क्या अपनाना, आप देखिए, हम तो शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग पर्सनैलिटी, वी आर डिस्कसिंग फिलॉसफी। अब आप अप्लाई करो, हमें अप्लाई ये करना है कि हमें दोबारा दीक्षा नहीं लेनी।
हाँ, इज इट पॉसिबल कि व्यक्ति शास्त्र का भ्रमण भी कर रहा हो? पॉसिबल तो हो ही सकता है, शास्त्र का भ्रमण भी कर रहा हो एडवांस के रूप में,
हो सकता है, हो सकता है। शास्त्रों के सारे नियम जो है, जो वास्तव में परमहंस वैष्णव होते हैं उनके लिए शास्त्रों के सारे नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। शास्त्रों के सारे नियम उनको बांध नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को बांध लिया है अपने प्रेम से। जिसने कृष्ण को अपने प्रेम से बांध लिया है, शास्त्र क्या बांधेंगे उनको? शास्त्र भगवान की वाणी है ना, उन्होंने तो कृष्ण को ही बांध लिया है। माता यशोदा को थोड़ा शास्त्र बांध सकता है कोई, उनको उन्होंने तो कृष्ण को ही बांध लिया। इसलिए इस पर हम लोग ज्यादा सोचे नहीं। हमारे लिए वैदिक भक्ति में जो लगे हैं, जिनको 16 माला करने में दिक्कत होती है, उनमें शास्त्रों में निर्देशन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन है, अपराध लगेगा। हमें निश्चित रूप से अपराध लगेगा, किसी को लगे ना लगे, हमें तो लगेगा ना, भले दूसरे को ना लगे हमें लगेगा। ठीक है, और गुरु से संबंध बनता है गुरु की आज्ञा का पालन करके। गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरु से संबंध बनेगा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे संबंध टूट जाएगा। संबंध ज्ञान स्थापित होता है सेवा करने से। आप गुरु की सेवा करते जाइए। गुरु केवल फिजिकल पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस में ही उनके साथ संबंध जोड़ा जा सकता है। गुरु स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, उनके शब्द में और उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से नाम में और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है, इसी तरह से गुरु में और उनकी वाणी में कोई भेद नहीं है। तो उनकी आगे का जो शिष्य पालन करता है, वो भले अमेरिका में रहे, वो गुरु के सबसे नजदीक है। लेकिन कोई अगर गुरु के बहुत पास है और अवज्ञा कर रहा है, वो गुरु से बहुत दूर है, वो गुरु का संग नहीं कर रहा है, वो केवल एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म में जी रहा है, इसलिए इस कारण से वो कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं करेगा। प्रभुपाद ने गुरु महाराज से कितनी बार मिले? केवल 6 बार 7 बार, मुश्किल से। लेकिन सबसे बड़ा कार्य प्रभुपाद ने किया, सबसे ज्यादा सफलता प्रभुपाद को मिली है, प्रभुपाद से महाप्रभु ने कार्य कराया। तो ये नजदीक और पास की समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या ये है कि हम लोग आगे का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये आवश्यक है। तो गुरु की आज्ञा क्या है हमारे लिए, अगर ये जानना चाहते हैं पर्सनल लेवल पर, तो हम पूछ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा हमारे पास टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी है, मेल कर लीजिए, पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, सिंपल है। प्राचीन समय में तो नहीं था, आजकल तो मेल फैसिलिटी है, फिर क्या दिक्कत है? आजकल एसोसिएशन तो और भी आसान हो गया करना, इसलिए शायद ये फैसिलिटी आई है ताकि भक्तों का लाभ उठा सके। रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। रिलेशनशिप एक्चुअली इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा व्यक्ति को, इम्पॉसिबल है। इंस्ट्रक्शन लेकिन वन शुड नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन लाइक यू नो सम लाइक ए फूलिश पर्सन। इंस्ट्रक्शन का फॉलो करने का मतलब है उसको पता होना चाहिए कि गुरु का मतलब क्या है और मैं कौन हूँ, गुरु कौन है। गुरु का कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि गुरु जिससे दीक्षा मैंने लिया है, उनकी जो सेवा कर रहा हूँ, ये कोई मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ये स्लेवरी नहीं है। अगर स्लेवरी की भावना से इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है तो उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते ना, कोई बोझ समझ कर सेवा करता है कि कहाँ फंस गया मैं, तो तीसरी श्रेणी का वो शिष्य माना जाता है। कोई कर्तव्य समझ कर करता है वो दूसरी श्रेणी का माना जाता है। जो प्रेम से करता है वो पहली श्रेणी का शिष्य है, जो अपने गुरु की इच्छा को जानता है बिना बताए बिना पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ के किया जाए, कर्तव्य समझ कर किया जाए, वहां से शुरुआत हो तो वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब वो शुरुआत है। और वैदिक भक्ति में ऐसा होता है, तो भक्ति ठाकुर इसलिए कहते हैं भय के कारण जो भक्ति करते हैं वो तीसरी श्रेणी में है, जो कर्तव्य समझ के करते हैं वो दूसरी श्रेणी में है, और जो प्रेम से करते हैं वो पहली श्रेणी में। प्रभुपाद का प्रेम था अपने गुरु महाराज से। आखिरी प्रश्न पूछिए, पूछिए। वो भय तो ठीक है, वो भय ठीक है कि मतलब इंस्ट्रक्शन ठीक समझे नहीं समझे, वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं। ऑव एंड रेवरेंस रहना चाहिए शिष्य को, हमेशा गुरु के समक्ष एक भय की भावना होनी चाहिए। भय के मतलब मर्यादा की भावना, ऑव एंड रेवरेंस की भावना होनी चाहिए। गुरु के सामने जाए तो हम शिष्य को एक तरह से क्या कहते हैं उसको, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि मैं साधारण व्यक्ति के सामने नहीं जा रहा हूं, तो एक भय है उसमें भी, लेकिन वो भय और दूसरा भय अलग है। भय का मतलब होता है कि मैं संसार से बचना चाहता हूं, इस भव सागर से बचना चाहता हूं, भय है ना, कई प्रकार के मुझे कष्ट सता रहे हैं, धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भय है, उसके कारण मैं सेवा कर रहा हूं, है ना, तो उस प्रकार का भय ठीक नहीं है। अरे कुछ तो अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे पंच संस्कार, पांच जो संस्कार आवश्यक जो होते हैं दीक्षा के समय, और साथ में फेथ इन गुरु, ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सब होने के बाद फिर हम लोग गायत्री मंत्र का डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन गायत्री मंत्र का मीनिंग नहीं बताएंगे आपको, वो मंत्र लेने के बाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।